बहुत ही प्रेम से और दिल से बोलें ओम शांति, ओम शांति। अच्छे से बोलें ओम शांति। आज हम सभी पिछले 3 दिनों से ज्ञान अमृत का रसा पान कर रहे हैं और ज्ञान की वर्षा में हम सभी स्वयं को प्रफुल्लित कर रहे हैं। आज उस अंतिम पायदान पर आकर हम पहुंचे हैं जहां पर कल तक हमने अनेक विषयों को लेते हुए भगवान की भूमिका पर भी बहुत विस्तार से परिचर्चा की, परंतु आज हम सभी श्रेष्ठ समाज में खुद की व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय के ऊपर मिल बैठकर विस्तार से सारगर्भित अनुभव युक्त परिचर्चा करें। उसके लिए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी जो पधारे हैं, जो भी थोड़े बिखरे बैठे हैं और नजदीक बैठेंगे तो ये प्रेम का प्रतीक होगा, ये स्नेह का प्रतीक होगा। हम सब आपसे चाहते हैं कि और नजदीक आ जाएं और मंच आप सबको आमंत्रित कर रहा है, जिनका हम नाम बहुत ही प्रेम श्रद्धा के साथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले आज के इस सत्र को, जिसे समापन सत्र नहीं हम यूं भी कह सकते हैं, नई शुरुआत का, जिंदगी की नई शुरुआत का सत्र है, अर्थात आज के इस सत्र में श्रेष्ठ समाज के निर्माण में हमारी भूमिका, इस विषय को हम सबके बीच में विस्तार से रखें। उसके लिए मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मनोहरमा दीदी जी, अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग, जो हमारे बीच में इलाहाबाद से पधारे हैं। हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। साथ साथ हमारे बीच में बहुत ही मान व सम्मान के योग्य राजयोगी करुणा भाई जी, चेयरपर्सन मीडिया विंग माउंट आबू, हम आपसे अनुरोध करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं। साथ साथ जो यहाँ पहुँचे हैं और जो पहुँच रहे हैं वो भी, सर्वप्रथम रामकृष्ण देव महाराज, स्पिरिचुअल स्पीकर यूएसए से, तत्पश्चात बहुत ही मान व सम्मान के योग्य डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व हिंदू परिषद दिल्ली। तत्पश्चात हमारे बीच में आज हैं स्वामी अतुल कृष्ण महाराज, रमता राम आश्रम चंडीगढ़ से। हमारे बीच में उपस्थित हैं आज गोरक्षानंद काकाजी महाराज, नासिक महाराष्ट्र से। साथ ही विद्या वाचस्वपति डॉक्टर रामचंद्र देखड़े, पुणे से। और साथ साथ 108 साध्वी विजय लक्ष्मीपुरी जी, शिव शक्ति मंदिर मोगा पंजाब से। साध्वी स्वाति गिरी जी, कथावाचक श्री धाम वृंदावन यूपी से। ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, कार्यकारी सदस्य धार्मिक प्रभाग इंदौर से। और हमारे बीच आज जो पधारेंगे, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी वरिष्ठ दादी जी ईशु दादी जो हमारे बीच में आएंगे, उनका भी हम दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और आप जो पधारे हैं अपने अपने स्थान पर, आपका भी हम सभी तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि हमारी परंपरा है, उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा जगत के मालिक निराकार ज्योतिर्बिंदु महाशक्ति शिव बाबा की मधुर स्मृति के साथ अर्थात परमात्मा की याद से।
One God, one world family. One God, one world family.
एक यही आवाज हर दिल से निकली,
एक यही आवाज हर दिल से निकली।
One God, one world family. One God, one world family.
विश्व एक परिवार है,
विश्व एक परिवार है।
एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली।
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
प्रेम एकता पवित्रता,
प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वन गॉड One World Family.
ओम शांति। हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है और ये हम सब का एक परिवार है और इस परिवार की अनुभूति आपने पिछले 3 दिनों से की भी होगी और ये महसूस तो हुई होगी कि हम सच में अपने घर में आ गए हैं। अब अपने घर में अपनों के द्वारा अपनों का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हम हमारी इस संस्थान की ओर से ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करते हैं कि मंच पर उपस्थित समस्त महानुभावों का पुष्प गुच्छों से बैचेस के साथ तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मनोहर महा दीदी जी, उनसे पूर्व परम आदरणीय करुणा भाई जी, आदरणीय मनोहर महा दीदी जी, संत जन, मुझे वो चंद लाइनें याद आती है। हो हर पल खुदा के दिल के पास। आप सभी खुदा के दिल के पास हैं तभी तो खुदा के घर में पहुंचे हैं। हो हर पल खुदा के दिल के पास तभी तो हम भी आपको सलाम देते हैं, सलाम देते हैं, सलाम देते हैं। ये तमन्ना अपने दिल की तमाम देते हैं, तमाम देते हैं। माना कि ये मुलाकात यूं ही होती रहे तभी तो ढेरों दुआएं दिल से, तभी तो ढेरों दुआएं दिल से श्रवण मास की इस सुहानी सुबह को हम आपके लिए देते हैं, हम आपके लिए देते हैं। और अभी इसी सुंदर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक नन्ही सी पटेल नगर से पहुंची हुई नन्ही परी जिसे स्मृति कहते हैं, सिमरन, सिमरन हमारे बीच में एक बहुत सुंदर सा नृत्य लेकर के आएगी, लेकिन शर्त है आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका हौसला अफजाई आप अवश्य करेंगे।
अयम में जहां परो वे लघु चेत सा उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है,
यही सोचना भूल है।
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए,
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए।
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया,
ये सब हमने ही बनाया।
आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया,
अपना लगे पराया।
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है,
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है।
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है,
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है।
जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां, हाथ उठा करके तालियां बजा सकते हैं इस नन्ही परी के लिए, इनकी टीचर के लिए और इनके माता पिता के लिए। ऐसी प्यारी और होवनहार बच्चे जिनके लिए हम और हमारे समस्त भारतवासी नाच करते हैं, यही भारत की होवनहार भावी नारी शक्ति हैं। और अभी आज के इस दिवस पर जहां एक बहुत सुंदर टॉपिक, एक बहुत सुंदर विषय जो किसी और के लिए नहीं, एक सवाल खुद के लिए है। हम हमेशा दूसरों के लिए कहते हैं, सरकार ऐसा करती है, लोग ऐसा करते हैं, संतों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न है, मुझे क्या करना चाहिए। आज ये प्रश्न हम खुद से अवश्य करेंगे और उसका जवाब भी खुद से अवश्य लेंगे कि मेरी भूमिका क्या है। समाज का निर्माण परिवार से होता है और हमारी संस्कृति तो विश्व को एक परिवार कह रही है, जो एक नन्ही सी बालिका अपने नृत्य के गीत के माध्यम से कह के गई। पर अपने आप से हम पूछें कि आज मेरा परिवार मेरा है और वो परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार से समाज का निर्माण होगा और उस श्रेष्ठ समाज के निर्माण में हमारी भूमिका। तो आज सर्वप्रथम हम एक ऐसी महान विभूति को आमंत्रित करना चाहेंगे जिनको आप पिछले 3 दिनों से जब जब सुनते हैं तब तब कुछ नया पाते हैं। आप समझ गए होंगे, आपकी वाणी ही सबके मन को हर लेती है, ऐसी हम सबकी स्नेही मनोहरमा दीदी जी। ऐसा माना जाता है कि, और लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि आपकी जीहा पर सरस्वती का वास है। पर हम कभी आपको देखते और कभी माँ सरस्वती को देखते तो हैरान हैं कि माँ सरस्वती को सरस्वती कहें या आपको सरस्वती। ऐसी प्रतिमूर्त हमारे बीच में आज बैठी हैं। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं, इसके साथ साथ आपने इस यज्ञ के बहुत बड़े बड़े अभियान, ऑल इंडिया पैदल यात्रा, ऑल इंडिया यूथ यात्रा, साइकिल यात्रा, ऐसे असंख्य अभियानों की आपने अगुवाही भी की है। जैसा कि कल भी बताया था, प्रयागराज में ब्रह्मा कुमारी का प्रतिनिधित्व आपके सानिध्य में होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इतना सब गुणों की खान होते भी बहुत ही सरल हृदय की धनी हैं। हम बस इतना कह सकते हैं, हंसता हुआ चेहरा आपने कभी भी मनोरमा दीदी जी को देखा हो 3 दिन में, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान है, पर हंस के किया गया हर कार्य आपकी पहचान है, आपकी पहचान है। परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी, अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग।
ओम शांति। बड़े मधुर क्षणों में यह सफर शुरू किया था और चलते चलते हम आज ऐसे सत्र में आ गए हैं, इस कागज पे लिखा हुआ है समापन सत्र। बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी जल्दी खत्म हो गया ये सफर। बहुत बहुत ही सामयिक विषय रखा है आज का, और हमारे मंच पर परम आदरणीय राजयोगी, हमारे मध्य उपस्थित भ्राता करुणा जी, कहा जाए समाज का चौथा स्तंभ और जमाने की तीसरी आंख, जिसे मीडिया कहते हैं, जितना विधान और विधानसभा जरूरी है, जितनी न्यायपालिका और कार्यपालिका जरूरी है, उतनी ही एक खबर पालिका भी जरूरी है, जिसकी नजरों से आप दुनिया को देखते हैं। और हमारे करुणा भाई ने उस खबर पालिका को ऐसे स्नेह की डोर में बांधा। मीडिया विंग के आप अध्यक्ष हैं, इलेक्ट्रॉनिक और साथ साथ लेखन प्रिंट मीडिया, आज के कार्यक्रम के आप अध्यक्ष भी हैं। और हमारे बीच जो महान संत पधारे हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण देव जी, स्पेशल स्पीकर यूएसए, स्वामी हमारे बीच अभी अभी पहुंचे हैं, कैलाश जी, और स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज, डॉक्टर दिनेश सेन जी, गोरक्षानंद काकाजी महाराज नासिक महाराष्ट्र से, विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामचंद्र देखरे जी पुणे से, नारायण भाई हमारे कार्यकारी सदस्य धार्मिक प्रभाग इंदौर से। तो आज हमारे अतिथि मेहमान भी हैं, श्री श्री 108 साधी विजयलक्ष्मी पुरी जी, साधी स्वाति गिरी जी मंच पर उपस्थित हैं। जो विषय रखा गया है, श्रेष्ठ समाज के निर्माण में हमारी भूमिका, हमारी का मतलब केवल हमारी नहीं, हाँ आप सबकी भी भूमिका, इस संत समाज की और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई बहनों की, समाज की भूमिका है। अगर चाहते हैं कि ये मारामारी का समाज न रहे, अगर चाहते हैं कि ये हिंसा और बलात्कारी समाज न रहे, अगर चाहते हैं प्रेम हो, सद्भाव हो, दया और करुणा हो, प्रीत की गंगा प्रवाहित होती रहे, एक ऐसा समाज, तो निश्चित है कि हम सबको अपनी अपनी भूमिका टटोलनी पड़ेगी। किसी ने लिखा है, ये मेरी पंक्तियां नहीं है, आंगन आंगन नाक फनी है, रिश्तों का सीना छलनी है, सूख गए हैं आंख के आंसू, इतनी ज्यादा पीर घनी है। किसी भी हृदय पर हाथ रखकर देखिए, पीड़ा है, और ये पीड़ा अलगाव की, विभाजन की, छोटे और बड़े की, अमीर और गरीब की, या जाति की, या संपन्नता की, कहीं ना कहीं कुछ है जो हम सबको जीवन जीते हुए जीवन की राहों में खटकती रहती। बहन संचालिका जी, कमल बहन, जिन्होंने अभी एक बात कही, वो थी कि अपने आप को देखें और अपने आप से शुरू करें। इस समाज की इकाई एक व्यक्ति है, और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र बनता है। जब भूमिकाओं का प्रश्न उठता है तो हमेशा हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम उन रहनुमाओं को देखते हैं जिन रहनुमाओं की रहनुमाई में समाज बनता है। उंगलियां उन पर उठती हैं, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं भूमिका हमारी भी होती है, लेकिन प्रायः हम रहनुमाओं को देखते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो समाज की चर्चा करता है, जिसे रामराज्य कहा गया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी ने भी कहा कि ये जो आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, हम चाहते हैं कि जब भारत आजाद हो तो रामराज्य हो। ये रामराज्य क्या है? बड़े सरल गांव वालों के शब्दों में कहें तो कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो कहा गया कि धर्म की रक्षा हम करें और धर्म हमारी रक्षा करे, जब जीवन के अंदर इसका पालन होगा तो राम राज्य होगा। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक किसी तरह का कष्ट न राजा को था न प्रजा को था। और गांधी जी के बाद जो कुछ हुआ, हम जैसे भी चले आपके सामने, चलते चलते कहां तक पहुंच गए वो भी आपके सामने। आज अब पुनः जब देख रहे हैं, कल भी आपने परिसंवाद सत्र में सुना था कि अनेका अनेक दीपक जलने के बावजूद कहीं अंधेरा है, उस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए उस जगत नियंता का आवाहन किया जाता है। जब घनघोर कुहासा अर्जुन के मन में छाने लगा था तो कहा गया था कुरुक्षेत्र में खड़ा राष्ट्र के अर्जुन का रथ है, वो विराट झांकी दिखलाओ, कांपे गात नहीं, झंझावात रहेंगे हरदम, ऐसी बात नहीं। आंधी और तूफान क्या सदैव थे, क्या सदैव चलते रहेंगे? नहीं, कभी तो वो जगत नियंता आएगा जो राष्ट्र के अर्जुन को वो विराट झांकी दिखलाएगा जो स्वयं को भी जानेंगे और स्वयं के सृजनकर्ता को भी जानेंगे, स्वयं परमपिता परमात्मा। जब अत्यंत धर्म ग्लानी होने लगती है तो इस धरा पर पधारे, और पधारने के बाद उन्होंने आधार लिया किसी मुख का। कल मैंने निवेदन किया था कि पौराणिक तथ्य भी सिद्ध करते हैं कि वेदों का भेद और शास्त्रों का सार ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया और आज भी सुनाया जा रहा है। गति धीमी जरूर है लेकिन हम बढ़ रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना की जाती रही है, वो समाज जिसमें आत्मवत दृष्टिकोण सबसे पहले दृष्टि परिवर्तित हो, हमारी वृत्ति परिवर्तित हो, हमारी कृति परिवर्तित हो। और जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलता, नजारे बदल नहीं सकते। जब तक ये आंखें समाज में उच्च वर्ग को देखती रहेंगी, निम्न वर्ग बेचारा क्या करेगा? निम्न वर्ग को देखेंगी तो उच्च वर्ग कहेगा कब तक, अरे इन गरीबों के सहारे कुछ होगा? जब तक हमसे बात नहीं करेंगी क्या होगा इनका? तो ये जो विभाजन है इसको थामने के लिए कहीं तो कोई पुल चाहिए, और वो पुल पहले हमारी नजरों में हो, आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव को लेकर चले। आत्मवत देखने का नजरिया कि हर एक को, न हम हिंदू देखें, न मुसलमान देखें, न सिख देखें, न ईसाई देखें, हम जिसको भी देखें उस जगत नियंता की रचना के रूप में देखें, आत्मिक भाव से देखें, बंधुत्व भाव से देखें, और ये बंधुत्व भाव जागृत किया उस परमपिता परमात्मा ने अपनी श्रीमत द्वारा कि हम प्रत्येक प्राणी मात्र को हर दायरे से अलग हटकर केवल आत्मिक भाव से देखें। जब व्यवहार करने की बात आए तो जो आत्मा के अंदर स्व का भाव है, जिसे हम कहते हैं ना क्या करें, मजबूरी है, स्वभाव है, निकल ही जाता है, बोल ही देते हैं, कर ही देते हैं। वास्तव में जो हम बोल देते हैं, जो हम कर देते हैं, जो हम क्या कहें सुन लेते हैं, ये सब बाह्य जगत में हमें मिला हुआ है। जब शिशु जन्म लेता है आप कहते हैं महात्मा है, कुछ लोग कहते हैं भगवान का रूप है। वो शिशु मानव का हो किसी जानवर का हो, बहुत छोटा सा बच्चा होगा वो भी बड़ा प्यारा लगता है। ये क्या है? क्योंकि उसके अंदर समाई हुई निर्मलता आपको खींच रही है, उसका शैशव, उसकी अबोध स्थिति आपको आकर्षित करती है। लेकिन धीरे धीरे जब नेटवर्किंग होने लगती है, आप उसे बताने लगते हैं कि ये जो ताऊ जी है ना बहुत खतरनाक है, हाँ दूर से नमस्ते करना, नजदीक नहीं जाना। जब आप बताने लगते हैं, वो अगर कुछ देना तो बेटा खाना नहीं तुम यहां ले आना। हाँ तो जब नेटवर्किंग होने लगती है तो उसके देखने का नजरिया बदलने लगता है, और जब बदलने लगता है तो निगाहें बदलने लगती हैं, वाणी बदलने लगती है, नमन करने के तरीके बदलने लगते हैं, और यहां से शुरू होता है विभाजन। उस शैशव मन में जैसे जैसे आप भरते हैं, पहले परिवार से मिलता है, फिर विद्यालय में मिलता है, फिर समाज में मिलता है, फिर राष्ट्र में मिलता है, और इस तरह हम बढ़ते चले जाते हैं, टुकड़े 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 होते चले जाते हैं। सत्य ये है कि हम बहुत बढ़ चुके हैं, अब जरूरत है कि हम एक सूत्र में पिरोए जाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और उसका ये तत्वाधान धार्मिक प्रभाग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एक शाखा वर्षों से निरंतर ये प्रयास करती चली आ रही है कि इस मंच पर भारतीय दर्शन, भारतीय वांग्मय के षट दर्शन हो, अनेकानेक भिन्न भिन्न शाखाएं हों, या हमारे मुस्लिम धर्म के इमाम हों, या क्रिश्चियंस के फादर हों, या गुरुद्वारे के सिख हों, हम सब सदैव प्रतिवर्ष इस मंच पर आते हैं, एक साथ बैठते हैं। और जब एक साथ बैठते हैं तो आपको बताएं, किसी ने कोई बगावत और हिंसा की बात, कोई अल्फाज तीर और तलवार के आज तक नहीं चलाए। हर एक ने यही कहा कि हमारी धर्म पुस्तक प्रेम का उपदेश देती है, हमारी धर्म पुस्तक अहिंसा, दया और करुणा का संदेश देती है, और हम भी वही देते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत छोटी बहन हूं आपकी, अगर सचमुच सब कुछ वही है तो आज ये बंटवारे क्यों हो रहे हैं? अगर हम समाज को एकता का, प्रेम का और भाईचारे का संदेश दें, हमारे ये संत संत बड़े परमार्थी हमारी आदरणीय दादी जी कहा करती थी, शीतल जिनके अंग, तो ऐसे संत उनका बार बार वंदन, बार बार नमन और बार बार निवेदन कि यदि एक प्रयास वो करें, उनकी रहनुमाई में समाज का बहुत बड़ा तबका सांस लेता है, जीवन जीने की कला सीखता है, चलना सीखता है, आचरण करना सीखता है, ये करुणा का और दया का संदेश यदि हम मानव मात्र तक पहुंचाना चाहते हैं तो इससे अच्छा जरिया कोई और नहीं है। इससे अच्छा जरिया इसलिए कोई और नहीं है, तो ये संत केवल ग्रंथ नहीं सुनाते हैं, सुनाते सुनाते स्वयं ग्रंथ बन जाते हैं। हमारी साध्वी विजयलक्ष्मी जी से चर्चा हो रही तो ये जो कुछ कह रहे थे उसको सुन के मुझे लगा अपनी ही पंक्तियां मेरी जुबान पे आई कि सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, हौसला कहने को कम रखते हैं हम, हम अकेले ही नहीं करते विकास, आपको भी अपने संग रखते हैं हम, और हम चाहते हैं
कि हम सब एक समाज एक स्थान पर एकत्र हों। पिताश्री जी ने जब भी संदेश दिया तो प्राणी मात्र का सम्मान करना सिखाया। आज महावीर स्वामी ने अहिंसा का संदेश दिया तो इस भय से नहीं कि वो चींटी मर जाएगी तो पाप लगेगा, एक जीवन चला जाएगा संसार से। वो करुणा थी जिससे ये संदेश बना कि किसी भी रास्ते पर चलो तो छोटे से छोटे अणुमात्र जीवधारी को भी जरा बचाते चलो अपने चरणों से। आज आप सब यहाँ संख्या में बहुत कम है, संतों की भी संख्या लगभग 40 थी हमारे पास जिन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन कुछ तिथियों का चक्र, कुछ काल चक्र की चातुर्मास बीच में आ गया और इसलिए हमारे वो सब संत यहाँ नहीं पहुंचे। तो चातुर्मास में संतों का आवागमन जो रोक दिया जाता है कि आप एक स्थान पे रहिए, कुछ और नहीं है। जो पादप, जो नन्हे नन्हे पौधे उगते हैं, कहीं वो भी न पैर से कुचल जाए, क्योंकि ये तो परिव्राजक है, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे समाज में संदेश देते हुए। तो एक जगह स्थान ले लें, कोमल धरती का जो हृदय है उससे निकले अंकुरित हुए पौधे कहीं दब न जाएं, कहीं किसी को हमारे द्वारा दुख न पहुंचे, अदृश्य जीव जंतु हमारे द्वारा हिंसा का शिकार न हो जाएं। इसलिए एक जगह एक स्थान पर बैठकर भजन पूजन करें। तो हमारे यहाँ जो करुणा, जो अहिंसा, जो प्रेम, जो सद्भाव की चर्चा सनातन धर्म ने प्रवाहित की, जो भगवान ने वेदों का भेद और शास्त्रों का सार पिताश्री जी के मुख से हम सबको दिया कि प्राणी मात्र हमारे लिए श्रद्धेय है, प्राणी मात्र हमारे लिए सम्माननीय है, और जिस समाज को हम रचना चाहते हैं उस सतयुगी समाज में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का द्वैत भाव नहीं, कोई किसी के बीच में ईर्ष्या नहीं, प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा की जहां सुरसरी बहती हो। मैं केवल एक बात कह के अपनी वाणी समाप्त कर दूंगी। एक बार एक टेलर की दुकान पे, जो टेलर था वो अपने बच्चे को भी ले आया था, और उसने थोड़ी देर तक देखा बराबर अपने पिता को कि जब भी वो कुछ सिलते थे तो सुई को टोपी में लगा लेते थे, और जब कुछ काटते थे तो कैंची को पैर से दबा लेते थे। बच्चे से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि मैं बहुत देर से देख रहा हूं आप कैंची को पैर से दबाते हो, सुई को टोपी में लगाते हो, लग गई तो क्यों करते हो आप ऐसा, सुई को भी तो नीचे रख सकते हो। पिता ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा, सुई जोड़ने का काम करती है इसलिए उसे सर से लगा के रखता हूं, कैंची काटने का काम करती इसलिए दबा के रखता हूं। तो ऐसी दुष्प्रवृत्तियां जो हमारे समाज को विघटन की ओर ले जा रही हैं, आपने 3 दिन में शिविर यहाँ किया होगा, जब आत्मा परमात्मा और साथ साथ योग की विधाओं को सीखा होगा, तो यही एक छोटा सा प्रयास है कि आप जोड़ने वाले बने। आप जहां भी कहीं खड़े हैं उस सुई की तरह समाज को सिलते चलें और समाज के सिरमौर बनते चलें। कैंची बनने की अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो उसे दबा दें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति।
बहुत 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 दिल से दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आपने अपनी वाणी में 3 दिन का समावेश करके इतने सरल शब्दों में और इतनी सुंदर कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव हम सब उनके बच्चों से ही अपना कार्य करा रहे हैं। आपने बहुत सुंदर मूल्यों की बात कही, जहां प्रेम सद्भावना अहिंसा दया करुणा और इन मूल्यों को आत्मसात अर्थात सिर पर शिरोधार करना है, और जो कोई छोटे मोटे अवगुण हैं उन्हें अपने आप से ही खत्म करने हैं, और सबको मिलकर के एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। बहुत सुंदर लाइन याद आती है कि मिली है रूह, हम सबको रूह मिली हुई है, आत्मा है या नहीं? हां जी ना जी, आत्मा ही बोलेगी। हम सब में आत्मा है, मिली है रूह, तो जीवन में ये कर्कश तपश बंदिशें क्यों हैं? जिस्म तो खाक होना है, फिर ये रंजिशें क्यों हैं? फिर ये रंजिशें क्यों हैं? फिर ये रंजिशें क्यों हैं? तो क्यों ना आज इस पावन स्थान पर लोग हरिद्वार में जाते हैं गंगा स्नान करके, और गंगा स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब कुछ त्याग करके आते हैं। तो क्यों ना आज अपनी ये रंजिशें इस सच्चे हरिद्वार पर, हर की पौड़ी पर हम त्याग करके जाएं और सदा सदा के लिए श्रेष्ठ जीवन ले जाएं। दीदी जी का पुनः बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही माननीय विद्या वाचस्वपति डॉक्टर रामचंद्र देखड़े, जो पुणे से पधारे हैं। हमने कल भी आपको सुना और उससे पहले भी हम आपको बुलाएं, उससे पूर्व हमारे बीच में दो अतिथि मेहमान और पधारे, उनका भी हम हमारी बहनों से अनुरोध कर रहे हैं पुष्प गुच्छ और बैट से सम्मानित करने के लिए जोरदार तालियों के साथ। स्वामी कैलाश स्वरूपानंद जी महाराज और साथ ही हमारे विद्या वाचस्वपति डॉक्टर रामचंद्र देखड़े, बहुत एक दो शब्द कहते हुए आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि स्वार्थ जहां समाप्त होता है जीवन वहां शुरू होता है। लोग कहते हैं आम आदमी, लोग कहते हैं आदमी को अमीर होना चाहिए, पर प्रभु और ये संत जन कहते हैं आदमी में जमीर होना चाहिए, जमीर होना चाहिए।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति। परमात्मा शक्ति द्वारा स्वर्णिम युग, ये तीन दिनों का ये जो ज्ञान सत्र था, आज उनका समापन सत्र है। व्यासपीठ पर बहुत बड़े बड़े सम्माननीय संत महंत प्रज्ञावंत प्रतिभावंत लोग खड़े हैं, सभी को और सभी रसिकजन को पहले प्रणाम। आज का जो समापन सत्र है, तीन दिन का जो परिसंवाद हुआ वो सिर्फ परिसंवाद नहीं था, वो सिर्फ कोई ज्ञान सत्र भी नहीं था, वो एक बड़ा सत्संग था। तीन दिन का एक बहुत बड़ा सत्संग यहां हमें अनुभव में प्राप्त हुआ है। पारमार्थिक लोग कहते हैं कि परमार्थ में संग नहीं होना चाहिए, परंतु मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता हूं, थोड़े उनके पर थोड़ा विरोध करके। परमात्मा परमार्थ में भी तीन संघ होना चाहिए। पहला संघ है प्रसंग, दूसरा है व्यासंग और तीसरा है सत्संग। प्रसंग मन, व्यासंग बुद्धि और सत्संग जीवन का परिवर्तन करता है। और ये तीनों संघ होने के बाद चौथे संघ में हम एक रूप होते हैं, उसे बोलते हैं परमात्मा संघ। और यही जो चल रहा है अपना ज्ञान सत्र, ये ज्ञान सत्र का जो प्रयोजन है वो परमार्थ संघ है। और आज का जो समापन सत्र में वो परमार्थ संघ की अनुभूति हम सब ले रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता तीन अवस्था है। ज्ञानी आदमी ज्ञान से ज्ञेय तक पहुंचती है, लेकिन ज्ञेय में ज्ञाता और ज्ञान से भी विलीन हो जाता है और ज्ञेय की अनुभूति होती है। ये ज्ञेय की अनुभूति ये ज्ञान सत्र का प्रयोजन होता है। आज का विषय तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ समाज के लिए निर्माण में हमारी भूमिका। मैं दो आपके सामने दो दृष्टांत पेश कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र का हूं, इसीलिए जहां इतर प्रांतों में सत्संग बोला जाता है वहां महाराष्ट्र में संकीर्तन बोलता है। संत नामदेव जी ने संकीर्तन किया और पांडुरंग उस कीर्तन में नृत्य करते थे। नामदेव कीर्तन करी पुढ़े देव नाचे पांडुरंग, नामदेव जी कीर्तन करते थे और पांडुरंग उसके सामने अपना देहो देह भाव छोड़ के वो उनके सामने एक रूप होकर नृत्य करते थे, ऐसा उन्हें वर्णन किया है। इसीलिए ये तो संकीर्तन है। मैं एक एक बात तो एक छोटा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। कीर्तन क्या है, सिद्धांत और दृष्टांत और प्रमाण, इसका एकीकरण जो होता है उसे संकीर्तन कहते हैं। आपने जो किया वो संकीर्तन ही था, उसमें फिर संगीत नहीं था, संगीत आएगा तो संकीर्तन हो जाता है। संकीर्तन ही महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है, मैं उन पर नहीं बोलना चाहता हूं। एक दो प्रसंग दो अपने सामने। ये आज का ये सभी सत्संग का प्रयोजन क्या है, एक कामगार था, आप जो सब लोग कर रहे हैं वो विद्वानों के लिए नहीं, प्रतिभावंतों के लिए नहीं, वो सामान्य संसारी लोगों की है। संसारी लोगों के दुख क्या है, इसीलिए सभी प्रयोजन इसका, इसके लिए सभी चल रहा है। एक सामान्य कामगार था, उनके मन में ऐसा था कि मेरा बच्चा है वो अच्छा होना चाहिए, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलना चाहिए, वो अच्छा सीखना चाहिए, वो बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, उसे विश्व का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उन्हें अपने अपने शिफ्ट समाप्त होकर घर में लौटने के लिए लौटता था, इसी में उन्होंने उनको एक नकाशा मिला। वो जो कागज पर नकाशा था उसे सभी विश्व का नकाशा था। उन्होंने अपने घर में लाया और अपने बच्चों को बोला, पुत्र को बोला, देखो एक कागज पर सभी विश्व का नकाशा है। नकाशा मीन्स मैप। ये कागज पर सभी विश्व का नकाशा है, थोड़ी पढ़ाई करो, एक जगह बैठने से आप सभी विश्व का ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने कागज देखा, थोड़ा उनसे गलती हो गया, कागज उसने फेंक दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। उनके पिताजी काम अपने कंपनी में गए। रात को आने के बाद दूसरे बच्चे ने कहा, बाबा बाबा जो कागज आपने दिया था उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, पिताजी बोले, नहीं मैंने कौन सी, मेरी क्या इच्छा थी, वो कागज देखे आप सभी विश्व कैसा है, कौन से प्रांत है, कौन से देश है, कौन से खंड है, कितना बड़ा विश्व है, ये सभी ज्ञात हो सकता है, इसलिए मैंने कागज दिया था। मुझे नहीं चाहिए वैसा होता, वैसा ही कागज मुझे चाहिए। टुकड़े टुकड़े होने वाला कागज जोड़ना कितना आसान था, लेकिन बच्चों ने सवेरे उनके सामने जैसा था वैसा जोड़ के कागज रखा। पिताजी ने बोला, बहुत आसान था ये सभी नकाशा जोड़ना, इतना आपने वो कैसा जोड़ा। उन्होंने जो उत्तर दिया है उसे में सभी ज्ञान सत्र का, ये सभी ज्ञान सत्र का प्रयोजन है। वो बोला, बाबा जी आपने जो कागज दिया था उस कागज के एक बाजू में सभी विश्व का नकाशा था और दूसरे पिछले बाजू में एक मनुष्य का, आदमी का नकाशा था। मैं आदमी जोड़ते गया तो विश्व जोड़ा गया। यही प्रयोजन है अध्यात्म का। प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आदमी जोड़ना, मानवता की ओर जोड़ना, मानवता से उन्नत करना, यही अध्यात्म का प्रयोजन हो सकता है। और इसीलिए हमारे सामने बहुत प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले यहां बैठे हैं। ये अनुभवी है, अनुभव में दो प्रसंग दो होते हैं, एक परोक्षानुभूति होती है। सामान्य आदमी को जानी होना चाहिए, जानी जब लौकिक अवस्था में अभिव्यक्त होती है तो उन्हें अनुभव कहता है, और वो अलौकिक अवस्था में जाती है तो उन्हें अनुभूति बोलते हैं। ये सभी अनुभूति लेने वाले, परोक्षानुभूति लेने वाले संत है। एक एक चित्र के शिक्षक थे, ड्राइंग के टीचर थे। उन्होंने लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को बहुत सी चित्र सिखाए, पेड़ का चित्र सिखाया, सूरज का चित्र सिखाया और आदमी का चित्र सिखाया और बोला जो आज मैं आपके पास एक कागज देता हूं, जो बच्चा सबसे पहले आदमी का चित्र खींचेगा उसे मैं आज बख्शीश दूंगा। आदमी का चित्र तो बहुत आसान होता है खींचने के लिए। एक दो मिनट में एक विद्यार्थी ने एक कागज मिटाकर उसके पास दिया और मैंने पहला चित्र लिखा है, पहला चित्र खींचा है, मेला पहला क्रमांक है। गुरुजी ने वो कागज ऐसा निकला और देखा और गुरुजी हंसने लगे क्योंकि उस कागज पर मनुष्य का चित्र नहीं था, उस कागज पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने बोले अरे प्रश्न चिन्ह कैसे? तो बोले आपने ही बोला था ना कि आदमी ही बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, सभी के सामने प्रश्न है, भौतिक प्रश्न है, प्रापंचिक प्रश्न है, आध्यात्मियों भी प्रश्न है, भगवान को भी प्रश्न, अर्जुन के मन में भी प्रश्न है, किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन के पास भी प्रश्न है, सभी के पास प्रश्न है। प्रश्न पढ़ना ये मानवता का लक्षण है, जीवंत संजीवन लक्षण है। लेकिन गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और बोला देखो मैं क्या करता हूं। वो प्रश्न चिन्ह के आगे उन्होंने स्वल्प विराम रखा और ऐसा बोला कि जो आदमी प्रश्न चिन्ह को स्वल्प विराम देता है वो जीवन में यशस्वी होता है। स्वल्प विराम प्रश्न चिन्ह को देना चाहिए सभी लोगों के लिए। सब बहुत प्रश्न है और ये सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो सत्संग है। 3 दिन में बहुत अच्छा सत्संग मिला, बहुत अच्छा सुंदर परिवार मिला, बहुत सुंदर परिसर मिला, बहुत सुंदर पर्यावरण मिला, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों का सहवास मिला। ये सभी देखते मुझे एक दो गोष्ठी का स्मरण आता है। उपनिषद में एक प्रार्थना है आनो भद्रा कतवो यंत विश्वतः लेट नोबल थॉट्स कम टूअर्स फ्रॉम एवरी साइड। मेरे कान पर सभी दिशाओं में ऐसे ग्लोबल विचार आने दो। ये सभी ग्लोबल विचार इसी परिसंवाद में इसी शिविर में हमारे कान में आए हैं, कान पर पड़े हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और जाते वक्त दो प्रार्थना जो दिया है न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गात न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। मुझे स्वर्ग मत दीजिए, पुनर्जन्म मत दीजिए, लेकिन वेदनाग्रस्त आदमी की वेदना शमन करने का सामर्थ्य मुझे दीजिए। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सभी विद्वानों को और आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
बहुत सुंदर हम जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत तल्लीनता से सत्संग का अर्थ जिसमें मानव मानव को जोड़े, बहुत सुंदर किसी ने एक बात कही कि ये तो जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त ईश्वर की इबादत करता रहे, प्रार्थना करता रहे, पर वो हाथ जो आदमी आदमी के काम आए वो ही सबसे सच्ची इबादत है, वो ही सच्ची सबसे इबादत है। आपने नामदेव महाराज का वर्णन करते हुए सत्कीर्तन की बात कही और सत्संग सत्य एक पिता है और उसके हम सब संघ में हैं और यही सबसे बड़ा सत्संग है। तो हम सभी सत्संग में बैठे हैं और हम पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर रामचंद्र देखड़े जी का, और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। यदि आप और नजदीक आएंगे तो हमें, वैसे तो लोग आगे आने की बहुत कोशिश करते हैं, अभी तो बहुत मौका है, आप पूरे विश्व में जाएंगे, जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, अच्छा लगेगा। और अभी हम स्वाति की बूंद विश्व भर में प्रसिद्ध है और बचपन से हम ये कथा भी पढ़ते आ रहे और ये सुनते आ रहे, तो हमारे बीच साध्वी स्वाति गिरी जी कथावाचक श्री वृंदा धाम से पधारी हैं। आप बहुत ही सरल हृदय की धनी हैं, ममतामयी हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि मोहब्बत ईश्वर से हो इंसानों से तो हम करते आए ही हैं, पर फिर कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं बेवफाई, कहीं ना कहीं जुदाई। तो अगर मोहब्बत ईश्वर से हो तो ना खौफ जुदाई का, ना खतरा बेवफाई का। तो चले, हम आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारी साध्वी बहन स्वाति जी को, जोरदार तालियों के साथ।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमबद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः, दक्षिणामूर्ते नमः। मंच पर विराजमान सभी संतगण, मेरे भाई, मेरी बहनें और जो हॉल में विराजमान है सभी भक्तगण, सभी को ओम शांति। आज इस प्रांगण में परमात्मा शक्ति द्वारा षण्मिक योग का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, आप इसमें बैठे हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ये परमात्मा शक्ति का स्वर्ण का युग है। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, उस युग को वापस लाने के लिए जो ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय प्रगति कर रहा है, जो परमपिता शिव बाबा ने जो संचालित किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। इसमें विषय तो बहुत अच्छा दिया है, श्रेष्ठ समाज के निर्माण में हमारी भूमिका क्या है। श्रेष्ठ समाज किसको कहते हैं? श्रेष्ठ कोई पढ़ाई लिखाई या कोई डिग्री प्राप्त करने से श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता या समाज नहीं बन सकता। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई गुण लक्षण नहीं हो तब तक वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता, तब तक वो समाज को भी श्रेष्ठ नहीं बना सकता। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे विचार लाएं, कि किसी के बारे में बुरा ना सोचे, किसी को बुरा ना करे और भलाई करे। भलाई नहीं हो सके तो किसी का बुरा ना करे। जैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये जो आगे बढ़ रहा है, अपने को ज्ञान की चर्चा सुना रहा है और सबको जोड़ रहा है, ये बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है जो हमको भी यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। जैसे संतों की संग में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं तो अच्छा अच्छा लोहा भी पारस बन जाता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से अच्छे अच्छे भी ज्ञान की ओर चले जाते हैं। इन्होंने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता, सुनने से कहने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान तो अपना मनन करने से, मन की शुद्धि करने से होता है। और मन की शुद्धि कैसे होती है? अपने आप को मौन में ले जाने से, अपने आप को शांत की ओर ले जाने से ये मन की शुद्धि होती है। उसी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, उसी से हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारा समाज भी श्रेष्ठ बनेगा। नहीं तो हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो हम समाज को क्या श्रेष्ठ बना सकते हैं। आजकल सब दूसरों पे थोप देते हैं कि आप सही नहीं है, हम सही है। पर पहले स्वयं को सही बनाए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाए, फिर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। यही अपना लक्ष्य है। जो अपने को परमात्मा ने जन्म दिया है इस धरती पे, उसको जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उसको श्रेष्ठ बना के जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पिकनिक मनाए, अपना जो खाना पीना है वो करके और ऐसे आराम करके चले जाए, ये कोई जीवन नहीं है। जब अपन परमात्मा के लिए आए तो परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा का ध्यान करना और परमात्मा के लिए भजन करना, सत्संग में जाना, संतों की शरण में जाना, और ये भाई बहन जो इस विश्वविद्यालय के हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद बहुत शांति प्राप्त हुई। हालांकि हमारे भी संत समाज में है, पर यहाँ आने के बाद इतना शांत माहौल प्राप्त हुआ मुझे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में जाने की कोई टेंशन नहीं, अब तो मुझे साक्षात स्वर्ग मिल गया है। स्वर्ग कहीं नहीं है, ये सोचना मत कि स्वर्ग ऊपर है या नीचे है, स्वर्ग तो यही है। अपने आप को स्वर्ग के लायक बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्वर्ग तक जाने के लिए अपने गुण को जीवन में उतारने पड़ेंगे, तभी स्वर्ग अपने को महसूस होगा। पर स्वर्ग ऐसा नहीं है कि खाने पीने ऐसा आराम करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो शिव बाबा जी ने जो स्वर्ग की उत्पत्ति की है, ये स्वर्ग की उत्पत्ति किए है, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये दूसरी बार आने का यहाँ मौका मिला, पहली बार हम पाटोदी रोड पे गुड़गांव गए थे, वहां भी बहुत शांति का अनुभव महसूस हुआ। और ये व्हाइट कलर जो सफेद कलर से सारे कलर निकलते हैं और सफेद कलर में सारे मिल जाते हैं, और परंतु सफेद कलर एक शांति का प्रतीक है। हमारा ये ऑरेंज कलर, भगवा कलर, अग्नि का प्रतीक है, इसलिए ये शांति का माहौल महसूस होता है, बहुत शांत स्वभाव। और इन बहनों का जो स्वभाव हमने देखा कि इतना शांत स्वभाव कि हमको न तो कथा करने का मन होता है न कहीं वक्ता बनने का मन होता, हमको ये लगता है हम भी अब इनकी तरह शांत बन जाए और मौन होके बैठ जाए, कहीं जाने की कहीं पटकने की संसार में कोई जरूरत नहीं है, किसी को लेक्चर देने की या किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, पहले स्वयं में ज्ञान उतारे फिर दूसरों को ज्ञान दे। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश करते, पहले स्वयं ज्ञान ले फिर दूसरों को ज्ञान दे, दूसरों को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत 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 खूब जोरदार तालियों के साथ हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। साध्वी स्वाति गिरी जी महाराज, आपके शब्दों से जो फूल बरस रहे थे, मानो कि वृंदावन में आपने हमें यहाँ बैठे भी वहाँ लेकर के गए हूँ। आपने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में और बहुत अच्छी और गहरी बात कही कि बुरा जो वेखण मैं चली, बुरा न मिलिया कोई। इस संसार में यदि ध्यान से देखा जाए तो कोई भी बुरा नहीं है, सुधारना है तो खुद को सुधारना है। और उसके लिए आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि समय को व्यर्थ ना करें, समय बहुत अनमोल है। उस पर मुझे वो चंद बातें लाइनें याद आ रही थी कि सब कुछ कर लेना पर लम्हों को जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना, इश्क हो खुदा से ये तो नियत की सलायत है, दिल ना झुके ना तो सजदे में सर जाया झुकाना मत करना, सर झुकाना मत करना, जो करना है दिल से करना और अपने मन से करना। और वो आपकी वाणी दिल की वाणी थी जो सभी को हृदय स्पर्शी लगी। और अभी इसी परिचर्चा को यूं ही, क्योंकि गंगा तो बहती हुई अच्छी लगती है, पानी तो बहता अच्छा है, तो क्यों ना इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बहुत ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहे हैं स्वामी अतुल कृष्ण महाराज जी को। आप सच में ही अतुल्य हैं। आप रमता राम आश्रम चंडीगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं। आपके लिए मैं दो शब्द कहती हूँ, वो जो प्रभु को कबूल होते हैं, वो जो प्रभु को कबूल होते हैं उनके शब्द भी फूल होते हैं। तेरे दर पे आके पता चला कि इश्क के भी कुछ असूल होते हैं, इश्क के भी कुछ असूल होते हैं। ऐसे परमात्मा से प्रेम करने वाले स्वामी अतुल कृष्ण महाराज जी चंडीगढ़।
मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतचरण और इस ब्रह्मा कुमारी संगठन के सभी प्रमुख, हमारी साध्वी बहनें, सामने उपस्थित इस सभागार में आप सभी परमात्मा के अनन्य आत्माओं, सबके हृदय में उपस्थित परमपिता परमात्मा को कोट कोट प्रणाम नमस्कार। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पिछले दिनों से चल रहा है और आज हम सभी समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि आप ऐसी विश्वव्यापी संस्था से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। वास्तव में भारत एक ऐसी भूमि है जिसने सारी वसुधा को, सारी धरती को एक परिवार माना। हम लोगों ने देखा जिस समय छोटी सी बच्ची यहां नृत्य कर रही थी और उसके गीतों के, नृत्य के भाव ऐसे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं बच्चे बड़ी सहजता और सरलता से अभिव्यक्त कर देते हैं। परमात्मा के लिए बच्चों जैसा मन, और जब भी परमात्मा की चर्चा होगी दुनिया के जितने देश हैं उन सारे देशों में, सृष्टि के कण कण में परमात्मा की व्याप्ति को हमें महसूस करना होगा। परमात्मा अफ्रीका के लिए भी, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्रिटेन के लिए, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान, चाइना, पाकिस्तान के लिए भी एक ही परमात्मा सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है। एक ही परमात्मा सारी दुनिया को पानी दे रहा है। जो बादल यहां माउंट आबू में बरसते हैं वही अफ्रीका में बरसते हैं, वही ऑस्ट्रेलिया में बरसते हैं। और उस परमात्मा की लीला तो देखिए कि वह समुद्र के ऊपर भी पानी बरसाता है। कोई सवाल कर सकता है कि समुद्र के ऊपर पानी की क्या जरूरत है, लेकिन परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है। परमात्मा हमारी तरह क्षुद्र नहीं, छोटा नहीं, उसकी सोच छोटी नहीं, और इसीलिए सारी दुनिया को एक रूप करके वह सबका पालन पोषण करता है। अन्न का कोई दाना, कोई बीज आप राजस्थान की धरती पर बोएंगे, बीजेंगे, और वही कोई अन्न ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आप डालेंगे, दोनों की प्रोसेसिंग समान होगी, क्योंकि सारी धरती एक। जो सूरज यहां दिख रहा है आप ब्रिटेन में फोन कीजिए, वो कहेंगे हाँ यहां भी सूरज निकला हुआ है। जो चांद यहां दिखता है वही अफ्रीका में दिखता है, वही ऑस्ट्रेलिया में दिखता है। तो ये जो सिद्धांत है, जहां ज्ञानवान लोग हैं, जहां सूझवान लोग हैं, जहां परमात्मा को जानने और समझने वाले लोग हैं, वहां कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई तमाशा नहीं है। और यह चीज ज्ञान से ही सिद्ध हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि सत्संग हम करें, खूब करें, जीवन भर करें। पिछले सत्रों में बहुत सारे वक्ताओं ने हमें इन सारे विषयों पर, बिंदुओं पर अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ये रोज की बात है, प्रतिदिन हम संकल्प लें कि हम कुछ अच्छा करेंगे, इस श्रेष्ठ समाज को हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, प्रतिदिन हमें देखना होगा। और इसीलिए संतों ने कहा कुछ पुण्य कर लो, अच्छे काम कर लो। पुण्य का मतलब क्या? क्या केवल पुण्य करके स्वर्ग जाना? नहीं, अभी साध्वी जी ने बात कही, हमारी बहन स्वाति जी ने, कि हमें स्वर्ग जो मिलेगा मिलेगा, कभी मिलेगा, ग्रंथों की बातें हैं, लेकिन हमें इस धरती को ही स्वर्ग बनाना है। हम जहां रह रहे हैं क्या हम इसको नरक बना करके फिर किसी और स्वर्ग में जाएंगे? इस धरती को, सारी कायनात को, सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है। हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाए, परिवार में स्वर्ग कैसे उतरेगा? जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ हमारी अच्छी संवेदनाएं होंगी, सबके सुख दुख में हम शरीक होंगे, और उसी परिवार से समाज बनता है, राष्ट्र बनता है, सारा विश्व बनता है, सारा ब्रह्मांड बनता है। तो ये चीज हमें नोट करनी होगी, हमें ध्यान में रखना होगा, और यही साधना है, सच्ची साधना यही है। सामान्यतः हमें समझते हैं कि साधना करने से हमारे पास सुखों का अंबार लग जाएगा। नहीं, परमात्मा का चिंतन करने से हमारा दिल बड़ा हो जाएगा, हमारे अंदर बड़प्पन आ जाएगा। सबसे बड़ी मूलभूत चीज हमारे जीवन में जो फलित होगी वह होगा आपका दिल बड़ा हो जाएगा, आपका दिल परमात्मा जैसा हो जाएगा, परमात्मा की तरह आपके हाव भाव हो जाएंगे। और यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत याची माम नमस्कारो।
हे अर्जुन तुम मेरे मन वाला हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं देखता हूं। और जो राजविद्या का यहां जो ईश्वरी विश्वविद्यालय इस महाविद्या का जो संचालन करते हैं, सिखाते हैं, क्लासेस देते हैं, श्रीमद भगवद गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या का 34 श्लोकों में भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है और जीवन में उतारने के लिए नहीं, तो भगवान कह देते कि अर्जुन जा फला जगह बैठ करके ये 700 श्लोकों का तो पाठ कर ले। ये चीजें, ये ज्ञान की चीजें हमें जीवन में उतारने के लिए, पाठ करने के लिए नहीं। पाठ भी ठीक है, लर्निंग के लिए पाठ भी ठीक है, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो आगे समझेंगे कैसे, लेकिन उसको जीवन में फलित करना, जीवन में उतारना, और यह परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। परमात्मा हर जगह हमारे लिए प्रकट नहीं होता। कई बार आप जैसे लोग, जो सज्जन लोग बैठे हैं, समाज के अच्छे लोग जो बैठे हैं, परमात्मा उनके द्वारा अच्छे काम करवा देता है। और यह सारे संतों का अनुभव है कि परमात्मा का चिंतन करते हुए, गीता का कर्म संन्यास योग यही है कि परमात्मा का चिंतन करते हुए संसार के श्रेष्ठ कर्म आप करते रहिए, और इससे आपको वह परम वैभव प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। ईश्वर का चिंतन करने से आपके सारे कार्य सफल होंगे। हमारे बहुत सारे संत, देश भर के संत इस बड़े कार्य में लगे हुए हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो झारखंड का है। श्रेष्ठ समाज कैसे निर्मित हो सकता है, इसका उदाहरण है, वहां का एक गांव है। उस गांव में कोई बैंक नहीं, कोई एटीएम नहीं, किसी प्रकार की फाइनेंशियल कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन गांव के लोग चूंकि परमात्मा से जुड़े हैं, अच्छे संतों का वहां आना जाना है, उन संतों का उनके जीवन में गहन असर है, प्रभाव है, और परिणाम क्या है कि गांव का हर गरीब, गांव का हर जरूरतमंद, वो आपस में फाइनेंशियली व्यवस्था करके उसकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। और जो वहां का बैंक, जो सोशल बैंक है, किसी को पैसा देता है तो कोई कर्ज नहीं लेता, कोई वहां लिखा पढ़ी भी नहीं होती, कोई उसका रिकॉर्ड भी वो मेंटेन नहीं करते, और ईमानदारी से वे लोग, चाहे किसी की बेटी की शादी हो, किसी की पढ़ाई की बात हो, किसी को खेतीबाड़ी करनी हो, किसी को बिजनेस करना हो, जितना संभव है अधिकतम उसको सहायता दी जाती है, सारे गांव को बिना किसी भेदभाव के। और यह चीज तभी संभव हो पाई है कि गांव के लोग जागरूक हैं, नहीं तो हर गांव में लड़ाई हो रही है। एक गांव को मैं जानता हूं जहां के सरपंच ने कहा सारे गांव के लोगों को कि हम इस गांव में ऐसे रहें कि इस गांव में कोई पुलिस नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होना चाहिए कि जरा सी बात हुई तो चले गए थाने में। क्या हम बेवकूफ हैं, हम मूर्ख हैं? हम बैठ करके गांव के सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं, और इसीलिए किसी को भी किसी थाने में, कोर्ट में, कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे समाज का निर्माण, ऐसी संस्थाएं, ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं, और इतना बड़ा इन्होंने निश्चित ही कितने सारे हाथ लगे होंगे, और कितनी सारी हमारी बहनें लगी हैं, भाई लोग लगे हैं इस समाज के निर्माण में, श्रेष्ठ समाज के निर्माण में, कि हम परमात्मा की अगर धरोहर हैं, परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है, तो इस समाज को हमें कुछ देकर के जाना, इस धरती को हमें स्वर्ग बनाना है, जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो समाज है, जो भी हमसे बिछड़े हुए लोग हैं, सरकार की और दूसरे तंत्रों की, जहां तक उनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, हमें उन तक पहुंचना, वे हमारे हैं। और यही तो गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी को अपनी आत्मा समझना, सब हमारे हैं। जैसे शरीर में, पैर में अगर मच्छर काटता है तब भी हमें दर्द होता है, पीठ में खटमल काटता है तब भी हमें दर्द होता है, ये सारा शरीर एक है, हाथ भी हम ही है, पैर भी हम ही है, आंख भी हम ही है, कान भी हम ही है, बेशक सारी इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं, लेकिन अगर आप देखें ईश्वरीय चिंतन से आप महसूस करें तो हम सब एक ही हैं। लेकिन समाज में तमाम तरह के व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं, कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने को वैश्य कहता है, कोई अपने को क्षत्रिय कहता है, कोई अपने को कुछ कहता है, लेकिन ब्राह्मण होकर के भी, अच्छा ब्राह्मणों में भी कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों में भी कितने प्रकार के क्षत्रिय हैं, वैश्यों में भी कितने प्रकार के क्षत्रिय हैं, ऐसे तो हम कितने हिस्सों में बट जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन सबको भूल करके हमें इस भारत ही नहीं सारी दुनिया को एक तरह से जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा का प्रकाश हमें वितरित करना है, तभी एक श्रेष्ठ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। इतना ही आप सभी के चरणों में फिर से प्रणाम, जय जय, ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत तहे दिल से अतुल देव महाराज जी का हम आभार प्रकट करते हैं। आपने बहुत ही गहरी बात हम सबके बीच में रखी, जीवन को सरल बनाने का एक उदाहरण भी पेश किया और संदेश भी हम सबको दिया। परमात्मा किसी भी धर्म मजहब के बंधन में नहीं, यहाँ तक कि देश जाति और भाषा से भी दूर है, क्योंकि कहा भी है कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही तो है। और परमात्मा क्योंकि बियॉन्ड है, धरती तो क्या, वो आसमान से भी पार, सूर्य चांद तारा गण से भी पार, इस गुरुत्वाकर्षण से भी पार, इसलिए उनके लिए तो सब एक हैं और जगत की हर आत्मा उनकी संतान है। और सरल जीवन के जो आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान बना लिया, जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और जहाँ सरलता है वहाँ श्रेष्ठता स्वतः ही आती चली जाती है। और अभी हमारे बीच इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं गोरक्षानंद काका जी महाराज, नासिक महाराष्ट्र से। आप बहुत विद्वत्व जन हैं, कई भाषाओं के आप ज्ञाता हैं, बहुत सरल हृदय के धनी हैं, मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी जी ने कह सकते हैं, ऐसे हमारे माननीय काका जी महाराज।
ओम शांति। क्या जोर से बोली है? बहुत अच्छा। अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे नीचे स्वर में ओम शांति, तो स्वर्ग से परमेश्वर देखते रहेगा ये हमारे भक्तों को हुआ क्या है। वो चिंतित रहेंगे हम कुछ देने में कम किया है क्या। अगर ईश्वर ने कुछ कमी नहीं की, बाप जोर से बोलना चाहिए ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आज हमारे यहां ये जो सम्मेलन तीन तक चला है, तीन दिन तक आप सब उसमें मौजूद है, आप उसका आस्वाद ले रहे हैं। मुझे पता है कि आप बहुत खुश है, आप बहुत ज्ञान, आप ज्ञान पिपासु है और आपको यहां बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है। इसलिए प्रथम हम ब्रह्म कुमारी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं शांति के लिए, उनने जो व्रत हाथ में लिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आज ब्रह्म कुमारी जी, मनोरमा जी बहन ने, जिनने ये व्रत लेके, शांति का व्रत लेके, कलयुग को समाप्त करने का जो ब्रह्म कुमारी प्रजा कुमारी विश्व का जो हाथ में व्रत लेके चले हैं, उनने जो पहले ही पहले सुंदर प्रवचन देके, इतनी सुंदर ज्ञान और हमें क्या करना है उसका मार्गदर्शन बताएं, उसके लिए हम पहले उनकी आभारी हैं। स्वामी अतुल जी ने बहुत अच्छी बात की अभी। उसने कहा था, एक गांव का छोटा सा उदाहरण दिया, वो सूर्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे में सब ज्ञान है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सबको एक समझते हैं और एक करके रहते हैं, तो हमें आज कुछ पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, सरकार की कुछ जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि हमारी जो चीजें की हमारी जरूरत है, अगर हम आपस में एकजुट में मिलकर अगर उसको पूरी कर पाते हैं, तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, जो फसादतें हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, उसमें जो मानव समाज और मानव समाज के सब प्राणी मात्र सब पूर्ण निसर्ग आज संकट में आ चुका है, इसकी कुछ जरूरत नहीं रही। आज ईश्वर ने सभी सुंदर निसर्ग निर्माण किया, सब प्राणी मात्रों को निर्माण किया, और उनको ऐसा लगा कि इन्हें कुछ कुछ कमी है हमारे निसर्ग उत्पन्न करने में, क्योंकि निसर्ग में सबको संभालने वाला माली कहां है? वो माली है ही नहीं, तो इनको संभालेगा कौन? इनको आनंद देगा कौन? इसलिए मानव को, बुद्धिशाली मानव को निर्माण किया। इसमें ईश्वर का एक ही था, ये मैंने मेरी अति उच्च मैंने एक चीज बनाई है, उसको बुद्धिमान बनाया, उसको अलग बुद्धि दी है। हर एक प्राणी को बुद्धि है, उसको बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक को बुद्धि है, हर एक को मन है, हर एक को भय है, हर एक को भीति है। मगर ईश्वर ने जो मानव निर्मित किया है, उसको एक माली बना दिया, क्यों? माली ऐसा है, वो दयावंत है, जो कृतज्ञ है, जो उसे पता है कि दूसरे को आनंद कैसा देना है, उसकी फुलावट की सजावट कैसी करनी है, अनाज को कैसा पैदा करना है, और ये सब वो दूसरों को लिए ही पसंद करता है, इसलिए माली बना दिया। और ये हम माली, ये मनुष्य, ये ईश्वर ने तो बुद्धि दिया और सब कुछ कहा है तुमको क्या करना है, ये निसर्ग के लिए, दुनिया के लिए तुम्हें क्या करना है, सब कह दिया था। मैं जन्म देते ही क्या होकर के वो भूल गया, क्यों? वो भूल चुका, ये ईश्वर ने कहा था जरूर, मगर यहां का जो भी स्वर्ग में मैं जब आया तो मैं सब भूल गया। इतनी बड़ी सुंदर धरती, इतनी बड़ी सुंदर स्वर्ग, स्वर्ग से भी अच्छा, और वो देख के भूल गया और जन्म पे ही बोला क्यों, और क्यों बोला भूला, और जैसा भूला ये मोह में आया, और आस्ते 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 दैत्य बनते चला गया। ईश्वर ने कहा था तुमको संभालना है सबको, ये जो मैंने निर्माण किया इसको सबको तुमको संभालना है, वो भूल गया और दैत्य बन गया। और जब दैत्य बन गया तभी एक कलयुग शुरुआत हुई है। कलयुग दूसरा सा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दैत्यों का राज है। मैं मेरे प्रवचन के हिसाब से, कोई स्टडी के हिसाब से, जब भी भारतवर्ष में और जगह घूमते रहा, समाज में जाके बैठते रहा, पूछते रहा, क्या तुम सुखी हो? और कलयुग में कैसा सुख है? कलयुग में हमें कुछ भी सुख नहीं है। बोला क्यों? यहां कोई ऐसे राजा नहीं है जो राम जैसे थे, जो कृष्ण जी जैसे थे। आज जो राजा यहां आ रहे हैं वो सब अशांति पैदा कर रहे हैं, सब स्वार्थ मोह षड रिपु से भरे हुए हैं, उनको अपना ही पड़ा है, हमारी जनता का कुछ भी नहीं है। हम हजारों वर्ष के पहले के राम की आज भी पूजा करते हैं, राम की आज भी याद करते हैं। राम जी ने जो जीवन बिताया है अपना, उसकी आज भी याद करते हैं और उसके गुण गा के आज भी खुश होते हैं। जो कृष्ण जी है उसने जो किया है उसको हम देख के आज खुश होते हैं। कृष्ण ने कहा है, राम ने कहा है, कर्तव्य कैसा करना है। राम के जीवन में सिर्फ कर्तव्य को महत्व दिया गया है और कृष्ण के जीवन में सिर्फ आनंद दिया गया है। क्यों? इनको पता था, हमें राम जी को पता था हमें आगे आने वाले जनता के लिए क्या सिखाना है, जो महत्व का है, कर्तव्य है। मैं जब कृष्ण जी ने देखा कि कर्तव्य के साथ साथ भी आनंद की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले कलयुग में सभी जनता दुखी होगी, तो दुखी जनता कुछ न कर पाएगी, उसके लिए उसको संगीत से, नाचने से, उनको ज्ञान से, ज्ञान जानना से उनको आनंद सिखाना है। कृष्ण के हर आप अगर पिक्चर देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो उसके अंदर हरी भरी सृष्टि दिखाई देती है, मोर और गाय दिखाई देती है, गरबा का नाच दिखाया जाता है, मुरली का संगीत बताया जाता है। तो ये सब चीजें जो वो हर भगवान ने अपने पीछे छोड़ के गए हैं, तो उसका अर्थ यही है, हम उसका त्याग न करें, उनको अपनाइए। आज हम कृष्ण के हर टीचर को देखते हैं, उसकी गीता भी पढ़ते हैं, मगर हम अपनाते हैं क्या? बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण लिखी गई, रामायण तो दो चार संतों ने लिखी, रामायण अच्छी लिखी गई, महाभारत भी लिखा गया, गीता भी कृष्ण से लिखी गई, ये सबका हमने अभ्यास करना है। ये अभ्यास छोड़ के हम उसको रेशम के कपड़े बांध के उसको अंधश्रद्धा के हिसाब से उसके माथा टक के फूल रख के रखते हैं, उनको हम अपना अभ्यास करते नहीं है, स्टडी करते हैं, आज जिसकी आज की अपनी जरूरत है। आज हमें उनको अपनाना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए और वो सब हम अपने कर्म में लाना चाहिए। अगर आज हम आज भी अगर ये अपने कर्मों में लाएंगे, इसको अपनाएंगे, तो ये भारत और ये दुनिया सुंदर होने को वक्त नहीं लगेगा। मैं आज तीन दिन से हूं, इसमें मैं कभी जुड़ा नहीं था। मैं मेरी ग्रंथों का स्टडी करना, ग्रंथों में लिखना, जो अच्छा मुझे लगता है वो लिखना, प्रवचन देना, इसमें ही था। मैं समझता हूं मेरा काम से मैं जल्द से जल्द कलयुग का अंत कर दूं, मगर आज मुझे इधर आने के बाद पता चल रहा है आज तक मैंने किया हुआ काम से शिवजी बाबा के जो अनुयायी जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और ये सभी अनुयायी जो हिसाब से जो मार्ग से जो मार्ग अपना के कार्य कर रहे हैं मुझे पता है इस 150 साल के अंदर अंदर यही मार्ग से शांति मार्ग से शिव बाबा ने बताया हुआ मार्ग से उनके जो अनुयायी काम कर रहे हैं अगर ये मैं कहूंगा तो झूठ नहीं होगा 150 साल के अंदर कलयुग समाप्त हो जाएगा। कवि रहे वाल्मीकि है सब लोगों ने बड़े ग्रंथ लिखे हैं मगर आज शिव बाबा ने जो मार्ग बताया ज्ञान मार्ग राजयोग मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। मुझे का वक्त कम है क्योंकि बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं कहना बहुत है मगर मेरे को चार घंटे लगेंगे ये पूरा करने के लिए 4 घंटा लगेंगे। ये छोटा विषय नहीं है बहुत बड़ा महान विषय है इसके ऊपर मेरा लिखान भी बहुत है कम से कम 10,000 के ऊपर ज्यादा पेज मैंने अभी तक लिख के रखे हैं। टाइम का वक्त का पाबंद हूं और इसलिए सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कलयुग का अंत होने के लिए अंत होना जरूरी है और अंत होने के लिए हमें सबको काम क्रोध मद मत्सर भय और आलस ये छोड़ना चाहिए और ये छोड़ के अगर शिव बाबा के जो उसने कहा है नियमों से और उनपे हम एकजुट होके अगर काम करेंगे राजयोग से शांति को अपनाकर तो जरूर हम ये कलयुग के कली को हटा के दैत्यों को हटा के हमें वापिस इस सत्ययुग को लाना इतना मुश्किल नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष षड्रिपु अहंकार का नाश करके अगर एक दूसरे को सहाय करके हम ये वचन संभाल के ये हमें कली को हटाना है दैत्यों को हटाना है राम राज्य लाना है सब दुनिया में सुखी करना है यहाँ स्वर्ग वापिस लाना है और ईश्वर को यहाँ आना है हमारे साथ में काम करने के लिए सबको सुखी करने के लिए हम इसमें कामयाब हो गए। शिव बाबा के सब अनुयायियों के साथ हम सब साधु संतों के सब लोग एकत्र हो जाएंगे तो ये भूमि सुखी होगी और हम नक्की कामयाब हो गए। जय शिव बाबा ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद काका जी महाराज का। हम एक बार जोरदार ताली के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने हृदय की पीड़ा सच्चे दिल की भावना हमारे बीच में रखी और इस दुनिया को बदलने में अब बहुत समय नहीं रहा ये भी आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे बीच कही। तभी तो कहा कि इस बार ऐसी ईमान की बारिश हो जाए कि भीतर तक की धूल धुल जाए और आपने खुशियों की बात कही और ये खुशियां कहीं और नहीं हमारे अंदर है वो हमारा अपना नजरिया है। तो चलिए हम सब मिलकर के एक बार खुशियों के गीत गाते हैं। बहुत देर से सुन रहे हैं अब थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? जैसी ताली
वैसी आगे की बात होगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ ये नारनोल से नन्ही कुमारी हमारे बीच में आ रही है अपनी पार्टी के साथ। खुशियों के गीत सदा गाए जा, दिल से यही गुनगुनाए जा।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
अजमा में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा
डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं,
सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो,
मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं,
नाम सितारों में अपना लिखाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा।
बहुत खूब इन नन्ही कुमारियों के लिए। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, और अपने आप से हम पूछें कि हम कितने बार मुस्कुराते हैं। सेल्फी लेते भी कई बार चेहरे को देख के घबराते हैं। अजीब सा ये फंडा है जिंदगी का। कहते हैं हंस मरता मरता भी गाता है, हंस मरते मरते भी गाता है, और मोर नाचते नाचते भी रोता है। हंस मरते मरते भी गाता है और मोर नाचते नाचते भी रोता है। अजीब फंडा है ये जिंदगी का। दुख वाली रात नींद आती नहीं, दुखों वाली रात नींद आती नहीं, और खुशियों वाली रात कौन सोता है, खुशियों वाली रात कौन सोता है। इन नन्हे बच्चों ने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया कि खुश रहना है तो खुशी के गीत गाए जाओ, और वो खुदा जब मिल गया अब खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। एक खुशनुमा चेहरा जो सदा हमारे बीच में रहता है वो है हमारे महाराज कैलाश स्वरूप जी महाराज। आपको जब भी सुना आपने इतना ओजस्वी वाणी से माना कि जैसे अपने शब्दों के उस दौर में कैलाश पर्वत तक पहुंचा देते हैं। आज पुनः हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं श्रेष्ठ समाज में। कल हमने बात की थी परमात्मा की भूमिका, और आज हम कह रहे हैं कि हमारे खुद की भूमिका क्या है। भगवान तो कहता है मुझे तो मालूम है मुझे क्या करना है या क्या नहीं, पर ए बंदे तू बता तुझे क्या करना है। तो आइए हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मंच आमंत्रित कर रहा है कैलाश महाराज जी को।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमादरणी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। परमाराध्य प्रभु दरबार मंचस्थ हमारे सभी आदरणीय श्रद्धेय संतजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सभी हमारी साध्वी बहनें एवं भाई, श्रोता स्वरूप के रूप में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर हमारी आप सबकी जिंदगी के लिए है। एक बात कह दूं, आज कहूं या कल कहूं, जरा मुस्कुराइए, अभी कहें, क्योंकि ये आज का ये सत्र समापन का सत्र है, और बड़ी खुशी होगी आपको कि समाप्त तो हो जाए, छुट्टी पाई घर चलें। ऐसा है नहीं है? ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप तटस्थ हैं। पर मैं एक क्षमा याचना कह दूं कि किंचित विलंबितम अत्रागमने पूर्व सूचना भावे तत्क्षम्यताम। विषय बड़ा सुंदर है, श्रेष्ठ समाज का निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, और ये परमात्म शक्ति द्वारा स्वर्णम युग का निर्माण का जो चतुर्दिवसीय ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा। मुझे यहां मंच में आने से पहले हमारे नारायण भाई जी ने बताया कि कुछ अनुभव की बात होनी चाहिए, और वैसे इन चार दिनों में कुछ शास्त्रीय बात, कुछ अनुभव की बातें होती रही हैं। मैं अपने अनुभव की ये बात बताऊं यहां आकर के, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि स्वर्ग ऊपर नहीं होता, नरक ऊपर नहीं होता है, होता है स्वर्ग इसी धरा पर, होता है नरक इसी धरा पर, पर मैं कहूं कि इस धरा पर नरक नहीं होता, इस धरा पर स्वर्ग नहीं होता, होता है स्वर्ग और नरक तो हमारे अंदर होता है, हमारे व्यवहार में होता है। ये अनुभव यहां मिल रहा है, ये एक वेद मंत्र है ओम शांति, जिसके अंत में शांति है, अर्थात यहां आकर के जो स्थिरता, जो शांति की अनुभूति मुझे ही नहीं, संभवतः यहां जितने भी श्रोतागण के रूप में आए होंगे, साधक के रूप में आए होंगे, दर्शक के रूप में आए होंगे, किसी भी तरह से आ गए होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ शांति तो मिली ही होगी, उन्हें मिली हो या ना मिली हो, मैंने तो अपने जीवन में बहुत सी शांति का अनुभूति किया है और कर रहा हूं, और इसी शांति की अनुभूति के लिए मैं बाल्यावस्था से इस संत परंपरा में जुड़ा हूं, गुरु परंपरा में जुड़ा हूं। हमारे द्वारा श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे हो, तो जहां हमारा शब्द आता है तो वहां संत से नहीं आता है, किसी साधु बहन से नहीं आता है, जितने भी समाज के लोग हैं, किसी भी तरह में है, किसी भी स्थान में है, किसी भी जगह में है, उन सभी के द्वारा श्रेष्ठ समाज का निर्माण होना चाहिए। और ये हमें नीति शास्त्र की एक सूक्ति कहती है, बचपन में पढ़ा था, आज उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि उसका अर्थ पहले कुछ और था, अब कुछ और है, लेकिन दोनों की आवश्यकता है। जो पहले अर्थ है उसी से संभवतः नींव बनती है, फाउंडेशन बनता है श्रेष्ठता के लिए, और वो एक संस्कृत की सूक्ति है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो प्राणी, जो व्यक्ति यद्यपि विद्यार्थी काल के लिए है, शिक्षक छोटे से बच्चे विद्यार्थी को सिखाते हैं कि बेटा जीवन में अभिवादनशील होना चाहिए। अभिवादनशील का मतलब है अपने से बड़ों को नमस्कार करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, अपने से बड़ों के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अपने से जो बड़े हैं, बड़े हैं उनका आदर मान सम्मान जीवन से हो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जीवन में चार गुण स्वाभाविक ही बढ़ते हैं। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं, ये हमको ये सूक्ति कहती है, विद्वानों की सूक्ति कहती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, निर्माण समाज का श्रेष्ठता वहां से होगी कि उसके जीवन में आयु, शरीर की आयु भी बढ़ती है, विद्या, लौकिक विद्या, पारलौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, आत्मिक विद्या, ब्रह्म विद्या, परा विद्या, ये सभी विद्याएं उसके जीवन में स्वाभाविक ही आती हैं। जो व्यक्ति अभिवादनशील है, वृद्धोपसेवी है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो, आयुर्विद्या यश, उसकी कीर्ति होगी, का गान होगा और यश गान आत्मबल बढ़ेगा, विद्या और बल आत्मबल। शरीर से बहुत आजकल मोटे हैं, संभवतः उस समय में तो भीम और कुंभकर्ण जैसे मोटे हो सकते हैं, पर आज तो सब भीम और कुंभकर्ण हो रहे हैं। भीम तो खा खा करके मोटा हो गया था और कुंभकर्ण सो सो के मोटा हो गया था। और इतने कार्य हमारी आज की जिंदगी में है, खाते और क्या करते हैं, सोते हैं, बस इतना ही काम है हमारा। कार्य कुछ नहीं हो पाता हमारी अपनी जिंदगी के लिए। तो शरीर भारी हो और उसमें सोचे कि इसमें बल बहुत होगा, ताकत बहुत होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। शरीर बहुत सुडौल होगा, पतला होगा, लेकिन उसके अंदर आत्मबल बहुत होगा। तो ये आत्मबल की चर्चा है। तो प्रारंभ से माता पिता शिक्षक गुरुओं के द्वारा ये भाव दिए जाते हैं, शीलता का, प्रेम का, सेवा का, समर्पण का, ये भाव जो दिए जाते हैं, वहां से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। और वही धीरे 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 जब व्यक्ति कुछ और अवस्था में आता है तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के गीता ज्ञान ग्रहण करता है। कहां आता है? ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के गीता ज्ञान ग्रहण करता है। और गीता ज्ञान ग्रहण करता है तो गीता ग्रहण करने के उपरांत गीता जी की वाणी है, भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चई सुपाके चा पंडिता समदर्शिनः, वो श्रेष्ठ बनता है। विद्या विनय से संपन्न हो जाता है, और जो विद्या विनय से संपन्न होता है उसमें एक साहित्यकार ने एक सूक्ति बहुत सुंदर लिखी है, विद्या ददाति विनयम विनया दायाति पात्रताम पात्र तत्त्वम धनम आपनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या हमको विनम्रता देती है, गुण हमको विनम्रता देते हैं, गुण हमको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, गुण हमको शांति देते हैं। तो जिस विद्या को पा करके, और या विद्या शादी मुक्त है, वो विद्या नहीं जिस विद्या से धन आए, वो विद्या नहीं जिस विद्या से वैभव हम एकत्रित कर सके, वो विद्या नहीं जो धारा से हम चांद तक पहुंच सके, वो विद्या नहीं जो धारा से हम मंगल ग्रह तक पहुंच सके, वो विद्या जो धारा में रह करके सर्वत्र व्याप्त हो जाए, सर्वत्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो विद्या जिससे हमको नम्रता आए, जिस नम्रता से, क्योंकि व्यक्ति ऊपर ऊपर से ऊपर नहीं उठता है, व्यक्ति नीचे से ही ऊपर उठता है। तो विद्या प्रारंभ से और ऊपर को उठाती, श्रेष्ठता की ओर ले जाती। तो ब्रह्म विद्या, ईश्वरी विद्या, आत्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या ही हमको श्रेष्ठ बनाती है। और इस ब्रह्म विद्या से संपन्न होकर के जब ईश्वरी विद्यालय से व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो प्रेम से भरा पूरा होता है। और यही अनुभव मैं आज महसूस कर रहा हूं कि यहां से निकली हुई हमारी सभी साध्वी बहनें और भाई इस ब्रह्म विद्या को, आत्म विद्या को, ईश्वरी विद्या को प्राप्त करके और वो प्रेम का संदेश और वो संतोष का संदेश और शांति का संदेश, नम्रता का संदेश घर घर, गांव गांव, शहर शहर में दे रही हैं, जिससे समाज की श्रेष्ठता का उत्थान हो रहा है और निर्माण हो रहा है। तो प्रथम गृहस्थ जीवन में उस माता पिता का कर्तव्य है, और उस माता पिता का कर्तव्य के बाद शिक्षकों का कर्तव्य है, शिक्षकों के कर्तव्य के बाद में ये ब्रह्म विद्या देने वाले गुरुओं का कर्तव्य है, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में ये हमारी भूमिका है। और इस भूमिका में यदि हम खरे उतरते हैं, उसके लिए हमें पहले ही विद्या विनय से संपन्न होना होगा, नम्रता से संपन्न होना होगा, तभी हम किसी को कुछ दे सकेंगे। इसलिए माउंट आबू पर्वत पर ये विद्यमान हमारे बाबा जी के द्वारा ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहां पर भगवान शिव का सुंदर उनका ज्योति स्वरूप प्रकाश ज्ञान हर एक हृदय में प्रकाशित किया जा रहा है। यहाँ आकर के मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई। कमरे में कक्ष में बैठ करके अम्बाला से जब मेरे लिए बहन श्री सरोज जी ने मेरे लिए कई वर्ष प्रयास किया, जब कहा बहन श्री ने रिजर्वेशन के लिए कराने के लिए कहा, मैंने कहा बहन श्री आप तो अपनी जगह होंगे और मैं अकेला हूंगा, शरीर से मैं अकेला हूंगा, तो जहां मुझे बिठाया जाएगा तो अकेला बैठूंगा। और कुछ आदत ऐसी पड़ गई है आश्रम में रहते रहते कि दूसरा एक कोई सहयोगी बातचीत करने के लिए होना चाहिए। भजन के लिए अकेला है वो उचित है, लेकिन वार्तालाप करने के लिए फिर मैं कुछ उदास महसूस करूंगा। इसलिए हमारे वयोवृद्ध 75 वर्षीय हमारे स्वामी सहजानंद जी महाराज, उनका भी भजन चलो साथ में ले चलो। तो एक जगह एक कक्ष में रह करके और जो सुविधाएं यहाँ हैं, जो दृश्य यहाँ हैं, केवल कल ही बाहर निकल के मैं सैर करने, जैसे मेरी आदत है प्रातः काल भजन पूजन के बाद में 2-3 किलोमीटर जाना और आना की आदत है, पर यहाँ वर्षात के कारण और कुछ सुना कि गेट के बाहर नहीं जाना। तो कल हम गेटमैन से पूछा, भैया कोई सड़क बता दो अच्छी अच्छी जो हो जिधर को चले जाए। बोले महाराज इधर को तो ठीक है लेकिन दूर ज्यादा नहीं जाना, राम को पहचान लेना ठीक से, वापस आएंगे। उन्होंने एक ही कारण बताया कि यहाँ जंगल है, कुछ वृक्ष वन्य पशु आ सकते हैं। तो यहाँ आकर के केवल यहाँ का दर्शन, कभी उधर गए कभी इधर गए कभी उधर आए कभी कक्ष में गए कभी भोजनालय में, कभी भोजन की शुद्धता व्यवहार की शुद्धता, ये भी तो एक उत्थान के लिए कारण है। तो यहाँ जो भोजन की शुद्धि है, यहाँ जो व्यवहार की शुद्धि है और यहाँ जो प्रेम की शुद्धि है, यहाँ जो शांति की स्थिरता है, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये भी हमारे लिए यही संदेश यदि वहाँ दे जहाँ अशुद्धि है तो समाज का निर्माण हो सकता है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज समापन का दिवस और मैं कहना ये चाह रहा था कि जब कोई घर परिवार का व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, चाबी तो उन्हीं की बगल में रहती है ना सारी तिजोरियों की, तो वो जब ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब अंतिम होने वाला है तो वो चाबियां अपनी बहुओं को और बेटों को पकड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये समापन सत्र अंतिम है, तो हमारे विद्वान लोग आप सबको वो ज्ञान की चाबी पकड़ा रहे हैं, श्रेष्ठता की चाबी पकड़ा रहे हैं, जिसको लेकर के आप धन धन हो जाएंगे। इसलिए मैं हमारी बहन श्री मंच संचालिका बहन कमल, मैं आशु कवयित्री कह सकता हूं, बड़ा ही सुंदर मंच का संचालन करती हुई, धन्यवाद इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि कहने सुनने लायक नहीं था मैं, कहने सुनने लायक नहीं था मैं, फिर भी यहां बुला के सभी की नजरों में लायक बना दिया। समापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात ये भी कहता चलूं कि लगे हैं पौधे बाग में, कभी तो खिलेंगे और रहेगी ये जिंदगी तो आपसे फिर। ओम।
बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं स्वामी कैलाश स्वरूपानंद महाराज जी के, और फिर नहीं मिलेंगे अब मिलते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है और परिवार के सदस्य आपस में मिलने की बात नहीं कहते, वो तो सदा के लिए उस घर के भांति ही बन गए हैं आप, और सदा यही के हैं और यही ही आप आते रहेंगे। बहुत सुंदर आपने विनम्रता की भी बात कही और विद्या की भी बात कही, विद्या माना ज्ञान और ज्ञान माना समझ। आपने जहां विनम्रता की बात कही तो कहा कि झुक जाना जिंदगी की जान है, झुक जाना जिंदगी की जान है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है।
अब हम सोच लें कि हम कौन हैं, अपने अपने घर में जाकर के जिनके साथ भी हमारी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है और हम नहीं बोलते हैं, फोन उठाना यहीं से ही और एक बार बोल देना कि हम जिंदा हैं। नहीं तो बहुत सुंदर किसी ने कहा, मैं ही गीता हूँ, मैं ही कुरान हूँ, मुझे पढ़, मैं ही सच्चा ईमान हूँ। यदि मनुष्य में ईमान जिंदा है तो सब कुछ है, और वही घर और परिवार सच्चा श्रेष्ठ परिवार श्रेष्ठ समाज है। और अभी हमारे बीच बहुत ही शांति की प्रेम की प्रतिमूर्ति स्वामी रामकृष्ण जी महाराज बैठे हैं। मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ उनका सम्मान पुष्प गुच्छ और बैच के साथ, और फिर उन्हें हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आज के विषय पर अपने अनुभव हमारे बीच साझा करने के लिए। आप अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और सबसे बड़ी बात आप वाणी को बहुत ही मौन कहते हैं, सबसे बड़ी वाणी है जो केवल भगवान सुनता है, और भगवान की जब हम मौन में रहते हैं तो भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, और वो आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल सार्थक किया। आप व्यर्थ बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम वाचा में आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत रमणीकता के साथ आते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत गमगीन या ऐसा रहते हैं, वैरागी से भी नहीं रहते, बहुत प्रेम से। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ रामकृष्ण जी महाराज को। इन्हीं को यहीं दे दो, यहीं दे दो।
ओम शांति। विलंब से आने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, मंच पे बिराजे सभी वक्ता को मेरा प्रणाम। नारायण भाई ने कहा कि आप जो अनुभव किए हैं यहाँ उसे शेयर करें। कल की एक घटना है, एक व्यक्ति ने पूछा, वहीं पे रहते हैं, कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। अफ्रीका में मैं जब था तो हाईवे पे मैं रुका एक फास्ट फूड की दुकान पे, वहां पे बैठा था, एक व्यक्ति आए, उनको वाईफाई की जरूरत थी, वो काउंटर पे गए और पूछते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। तो काउंटर पे जो व्यक्ति थे वो कहते हैं बाय फर्स्ट ड्रिंक। तो उन्होंने एक ड्रिंक बाय कर लिया और जाकर के बैठ करके वो पीने लगे। फिर वो काउंटर पे गए, पूछे कि वाईफाई का पासवर्ड बताओ। तब तक के दूसरे शिफ्ट वाले व्यक्ति आ गए थे, तो उनको मालूम नहीं था कि इन्होंने ड्रिंक बाय कर लिया है। तो उन्होंने फिर कहा कि बाय फर्स्ट ड्रिंक। तो फिर उन्होंने ड्रिंक बाई किया और पिया। फिर जाकर के उन्होंने कहा कि पासवर्ड क्या है, तो फिर वो बोलते हैं बाई फर्स्ट ड्रिंक। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह जो पासवर्ड है वही है कि बाई फर्स्ट ड्रिंक पासवर्ड ही है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अनुभव क्या कर रहे हैं, आपको यहां कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा ओम शांति। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, फिर मैंने कहा ओम शांति। ये ओम और शांति दोनों मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो समझ नहीं पा रहे। अब नारायण भाई ने कहा कि आप शेयर करें, इस ओम को और शांति को मैं कैसे शेयर करूं, बहुत मजबूर हूं। मैं क्या बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीरा, दादू, नानक, चरस्थ, जितने भी लोग हैं वो बोले कि मुझे जो मिला है मैं तुम्हें दे नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन मार्ग बता सकता हूं कि वहां तक कैसे पहुंचना है, शांति तक, ओम तक, उसका अनुभव तक कैसे पहुंचना है। तो जब मैंने उनको कहा ओम शांति, वो समझ नहीं पाए और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंजूसी कर रहा हूं। उन्हें भी लगा कि ये ठीक से जवाब नहीं दे रहे मैं जो पूछ रहा हूं, लेकिन मैं तो जवाब दे ही रहा हूं। एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक कंजूस रहा करता था, उसकी बहुत ख्याति थी। उसे मालूम चला कि बगल की गांव में एक और कंजूस है जो उससे भी बड़ा जो है कंजूस है। तो यह कंजूस अपने बेटे को एक तोते की तस्वीर बना करके भेजा कि उस गांव में जाओ, जो कंजूस है उसे तुम दे करके आओ और निमंत्रण करना हमारे घर पे आने के लिए। जब वो लड़का गया वहां पे तो कंजूस नहीं था, उसके बेटे थे। और अपने उस बेटे से बात की कि मेरे पिता ने एक उपहार भेजा है आपको देने के लिए, तो ये रहा उपहार। तो उसके बेटे ने भी आम दिया। उसके बेटे ने कैसे आम दिया, ये तो कम से कम कागज पे तोते के पिक्चर बना के लेके गए थे, लेकिन उसके बेटे ने हवा में आम बनाया और गिफ्ट कर दिया। तो वो लड़का सोचा जब बेटा इतना कंजूस है तो पिता कितना कंजूस होगा। दूसरे दिन उसके पिता आए और उसका लड़का कहा कि बगल की गांव से एक व्यक्ति आए थे, ये तोहफा देके गए हैं। उनको मैंने खाली हाथ जाने नहीं दिया, मैंने भी उनको जो है गिफ्ट दे दिया। वो जो आम बनाया था हवा में वो आकृति बना करके बता दिया। तब उसके पिता ने कस के एक थप्पड़ लगाया। क्यों लगाया, कि जब मैं नहीं रहता हूं तो कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, लगता है तू लुटवा के छोड़ेगा। जब आम देने ही थे तो बड़े बड़े क्यों देने थे, छोटे देते। तो यह जो अनुभव है, अनुभव में कैसे शेयर करूं, बहुत ही मजबूर है। हाँ, कह सकता हूं कि ये शांति, ये ओम की अनुभूति मिली है। आज सुबह में जब निकला एक और अनुभूति हुई, पूरे कुहासे घिरे हुए थे, हल्की सी बारिश हो रही थी और इस प्रांगण में बहने ऐसे घूम रही थी, एक जगह से दूसरे जगह जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे एंजल यहां पे घूम रहे हैं। जब आप गहरे ध्यान में जाओगे, मूल मंत्र है ध्यान, जब गहरे ध्यान में जाओगे तभी ये सब अनुभूति होगी। बिना ध्यान के कोई उपाय नहीं है कि आप एक्सपीरियंस कर सको किसी भी चीज का। मुझे यहां पे बहुत बड़ा सम्मान और अवसर दिया गया अपनी बातों को रखने का, अपने एक्सपीरियंस बताने का, शेयर करने का नहीं। मैं मजबूर हूं, शेयर नहीं कर सकता, इस मामले में कंजूस हो जाता हूं। दिखने में तो लगता है कंजूस, लेकिन मैं दे ही नहीं सकता, सिर्फ बता सकता हूं। वो मजबूरी है, जिन लोगों को अनुभव हुआ वो मजबूरी है। तो जो ये मौका मिला वो सबके लिए, आप लोगों के लिए जो किचन में काम करते हैं, जो काउंटर पे यहां काम करते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।
बहुत बहुत तहे दिल से हम महाराज जी का शुक्रगुजार हैं। आपने इतने धैर्यवत और इतने अनुभव से शांति का अनुभव कराया कि मुझसे भी अब बोला नहीं जा रहा। आप सच में ही बहुत ही हर चीज को गहराई से अनुभव करते हैं, और आपकी एक खूबी जो आपने रामनाथ भाई जी और हमारे दीदी से भी कहा कि मुझे यहाँ जो सच में खोज थी उसकी प्राप्ति मैंने यहाँ की, तो ये हमारे ऊपर है कि हम यहाँ की किस चीज को ग्रहण करते हैं। सुंदरता को देखते हैं, वातावरण देखते हैं, भोजन देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, ये सब होते भी उस जगत नियंता से जो कनेक्टिविटी है, जो ओरा है, जो प्राप्त कर सकते, वो आपने यहाँ किया और अभी थोड़ी शब्दों में हमारे बीच में भी रखा। इसलिए हम आपके फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। गजब दिल वाला मेरा कन्हैया है, गजब दिल वाला मेरा कन्हैया है, उसके देने के रूप कई अनेक हैं। गजब दिल वाला मेरा कन्हैया है, गोवर्धन तो अंगुली पर उठाता है और बांसुरी को दोनों हाथ से उठाता है। तो उसके अनुभव बहुत ही निराले हैं, हम कैसे प्राप्त करते हैं ये हमारे ऊपर है। और अभी आज की इस सभा के भी चेयरपर्सन बहुत ही मान व सम्मान के योग्य करुणा सिंधु करुणा निधान परमात्मा की सबसे प्रियतम संतान, बिनु कारण करे कृपा कृपा निधाना, वो करुणा के आप ऐसे करुणा के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, करुणा के मास्टर सागर बन सुनते करुण पुकार हैं, जन जन तक प्रभु संदेश पहुंचाते, करते उस रब से सच्चा प्यार है, करते उस रब से सच्चा प्यार है। ऐसे हमारे करुणा भाई जी आप मीडिया प्रभाग के चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वरिष्ठ भ्राता हैं, आपने मातेश्वरी जगदम्बा माँ से डायरेक्ट पालना प्राप्त की है, आपने स्वयं प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा से शिक्षा दीक्षा और मार्गदर्शना प्राप्त की हुई है, आपने शिव बाबा के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर के छोटे कॉलम से शुरू करते हुए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए पीएम टीवी जो 24 घंटे पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके पीछे भगवान के साथ साथ यदि कोई देन है तो वो आपकी देन है। इसलिए हम जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं, आमंत्रित करते हैं आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम नमो शिवाय सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे मंच साथी पूज्य संतजनों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, चार दिन से आप यहां हैं, सुन रहे हैं, अपना अनुभव भी आप सब ने सुनाया, परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो ईश्वरीय शक्ति से स्वर्णिम युग, इस विचार को रखते हुए आप सबको निमंत्रण दिया है, तो हमारे मनोरमा दीदी जी के मन में कोई और भी संकल्प है, जरूर है, तो मैं आपको दो शब्दों में वो बताना चाहता हूं कि ये विश्वव्यापी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 83 साल से लगभग 140 देशों में अपना कार्य कर रहे हैं, 50,000 बहनें इस समय पर, जैसे आप कुछ बहनों को यहां आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही सेवा सारे विश्व में कर रहे हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा परिवार को इन्होंने आप समान बनाकर सारे विश्व में एक महान कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम चाहे न चाहे, हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उन्होंने अपना पहला कदम, आप जानते हैं, विश्व योग के नाम से सारे विश्व में जून 21 तारीख का निश्चित करते हुए मैं याद दिला रहा था, हमारे मनोरमा दीदी जी के मन में आप सबको यहां बुलाने के पीछे क्या संकल्प था, तो वही है जो इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की जो संकल्प किया है, और वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ से ही ये कार्य हो सकता है। तो भारतवर्ष के हम जितने भी साधु संत महात्माएं हैं, तो हम सब एक होकर के ये कार्य को पूर्ण करना है। इस लक्ष्य को लेते हुए इन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस कार्य में हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसी क्या बात है जो हम सारे विश्व के सामने रख सकते हैं? तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप संतों के लिए तो नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा गया है परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। इसको बहुत सरल भाषा में हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें ये बताते हैं कि एक ईश्वर ज्योति स्वरूप, पंच तत्व से बनाया हुआ एक विश्व जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, पांचों तत्वों का ये पृथ्वी हम सबका है जहां हम बैठे हैं। तीसरा, जो आज जो भिन्न भिन्न प्रकार से देश, भाषा, धर्म, अनेक जो हमारा जो टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, तो इसको भी इन्होंने एक ही शब्द से एकत्रित किया है 140 देशों में, वो है वसुदेव कुटुंबकम, एक परिवार। हम सभी जो यहां बैठे हैं, चार दिन से आप देख रहे हैं, सभी ऐसे लग रहे हैं हम सब एक ही परिवार के हैं। ऐसा किसी को ये नहीं महसूस हो रहा है यहां हम कहीं और किसी के पास आए हैं, नहीं, एक ईश्वर के हम बच्चे हैं। तो इसीलिए ये जो तीन संदेश है, ईश्वर एक ही है और एक ही ये विश्व है और हम सभी ईश्वर के संतान, एक परिवार है, ये संदेश को सारे विश्व में देने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रह्मा बाबा जी ने किया था। परंतु एक और नई बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जितने भी धर्म इस विश्व में है तो उनका जो स्थापना का दिन भी है और तब से, जैसे इस्लाम है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सभी धर्मों का इस सदवी से शुरू हुआ है, परंतु एक धर्म है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, तो वो कोई नहीं जानते हैं कि वो धर्म कब स्थापन हुआ और किसने किया। हाँ, गीता में हम सब पढ़ते हैं, तो एक ऐसा समय भी आएगा जब सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी लोग अपने अपने देह के, देश के धर्म को छोड़ करके एक विश्व धर्म में एकत्रित होंगे। तो ऐसी हमने गीता में पढ़ी है और मुझे लगता है तो वही कार्य हमारी बहनें बहुत गुप्त रूप से करते आए हैं। हम सभी जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल का नाम था जिसमें सनातन धर्म सभी को सिखाया जाता था, परंतु समय अनुसार अन्य धर्म वालों ने हमारी इस संस्कृति को बदलने की प्रयास किया परंतु सफल नहीं हो पाए। हमारी बहनें 83 साल से वही कार्य कर रहे हैं जो गुरुकुल करते आए थे, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के कार्य तो बहुत गुप्त रूप से शिक्षा के रूप से विद्यालय के रूप से ये कार्य करते आए हैं और आज सारे विश्व में एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में फिर से सनातन धर्म आप सबके आगे आ रहा है। तो इसीलिए आज के दिन हम सभी फिर से विश्व में भारत सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं और विश्व में फिर से ईश्वरीय शक्ति से स्वर्णिम युग अथवा देवता धर्म को स्थापन कर रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का शिक्षा दे रहे हैं और ऐसे कार्य में हम सब मिलकर के एक होकर के सारे विश्व में भारत विश्व का गुरु बनेगा, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना ये दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
करुणा भाई जी का भी हम बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार करते हैं और आपने अपने भाव कि ये भारत जगत गुरु था और फिर से जगत गुरु बनेगा, कितना उज्ज्वल और कितना स्पष्ट विजन है आपका, आपने हम सबके बीच में रखा और इस सभा को वरदानी सभा बनाने के लिए हम सबके बीच में हम सबकी ममतामयी दादी माँ हमारे बीच में है। हम चाहते हैं एक बार खड़े होकर के हम सब दादी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ऐसी मीठी प्यारी दादी माँ का जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ दादी जी को पुष्प गुच्छ तिलक देकर के दादी के उठे हुए वरदानी हाथ हमारे जीवन को सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देंगे, धन्य धन्य कर देंगे। ऐसी मीठी दादी माँ की दृष्टि हमारे लिए। दादी माँ आप सभी स्थान लें। एक नन्ही सी बच्ची दादी माँ के स्वागत के लिए हम सबके बीच में आ रही है पुनः पटेल नगर से, शिवप्रिया साथ है। जब दादी जी हमारे साथ हैं तो शिव बाबा तो हमारे साथ स्वतः है ही। ऐसी मीठी दादी माँ की उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत पुण्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारी दादी माँ हैं।
शिवप्रिया साथ है।
बहुत खूब शिवपिया साथ है, हम सबके भी साथ हैं। और इस नन्ही कुमारी का भाग्य की दादी माँ से कितना प्रेम पा रही हैं, और हम सब का भी यही भाग्य है हमारे बीच में ऐसी मीठी प्यारी ईशु दादी। आप अल्पायु में ऐसी छोटी सी उम्र में इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जब पिताश्री और माँ जगदम्बे सरस्वती ओम मंडली की शुरुआत थी तब आप आए थे, और कैसे एक नन्ही सी बालिका देखते देखते इस यज्ञ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था आपके हाथ में सदा से रही और आपने ही संभाला ये बागडोर अर्थव्यवस्था इतनी सुंदर जो आप देख रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईमानदारी क्या चीज होती है, वफादारी क्या चीज होती है, सच्चाई क्या चीज होती है, यदि जिंदगी में सीखना हो तो सच में दादी माँ के सानिध्य में आ जाएं, तो हम सदा सदा के लिए इन गुणों को अपने जीवन में बिना कहे आत्मसात कर सकते हैं, सदा के लिए पा सकते हैं। बस हम तो इतना कहना चाहते हैं, ए माँ तेरी सूरत से अलग, ए माँ तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी। आप सब भी कह सकते हैं, कहें एक बार, ए माँ तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी। दादी जी को सुनने के लिए पूर्व हमारी मनोरमा दीदी जी, दादी जी के लिए चंद शब्द अपने शब्दों से।
ओम शांति। आप सब और हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत दूर से ये मोती ढूंढकर लाए हैं जो आज आपके सामने है। कारण कुबेर की तिजोरी का हीरा है। बाबा ने आपको जब चुना था, बहन ने कहा दो शब्द बोलेंगी, वैसे तो परिचय दे ही दिया है। सागर सा गंभीर हृदय है, सोच हिमालय जैसी है। हम लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद ऐसा लगता है कुछ रह गया है। थोड़ी देर और बहन जी छुट्टी देती तो और बोलते हैं, वो रह गया। और हमारी दादी में विशेषता है मौन रहती है। बहुत हुआ, मुखर होंगी, मुस्कुराएंगी, आशीर्वाद देंगी, उन्हें देखकर हमेशा एक बात याद आती है, कर्म गति को उन्होंने जो कुछ किया है अपने आचरण से, जीवन के शतक के दौर से गुजर रही हैं, 93 क्रॉस कर चुकी हैं। तो कहा जाता है कर्म गति को अगति की संज्ञा न दो तुम, कर्म गति को अगति की संज्ञा न दो तुम, वायु गति द्रुतिगामिता की इति नहीं है, मंच है अनुभूति की अभिव्यक्ति अनुपम, मौन मौन है अनुभूति की अभिव्यक्ति अनुपम, मंच ही अभिव्यक्ति की परिणति नहीं है। यहाँ से कोई कुछ कह गया वही सब कुछ नहीं है, उनके मौन में, उनके आशीर्वाद में, उनकी दृष्टि में बहुत कुछ समाया हुआ है। जैसे अभी पूर्व वक्ता हमारे स्वामी रामकृष्ण देव जी बोल रहे थे कि मैं पासवर्ड नहीं बता सकता, और पासवर्ड बहुत बार बताया गया। ठीक उसी तरीके से दादी जी की मुस्कराहट बाबा की शिक्षाओं का पासवर्ड है, उनकी दृष्टि, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कुछ है। और दादी हमेशा मौन और हमेशा अंतर्मुखी रहने वाले फरिश्ते की तरह हैं। मेरा ख्याल है हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो मुख्य प्रशासिका 40-42 वर्ष तक इसी स्वर्य विश्वविद्यालय की रही, उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आई हैं, लेकिन मुखर नहीं हुई,
मौन आशीर्वाद देकर चली गई और आज पहली बार वो यहाँ हमारे बीच मंच पर है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो और आज वो मुखर होंगी, कुछ हमें आशीर्वाद देंगी। हम बड़े भाग्यशाली हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है इस संपन्नता सत्र में उनका कोटि कोटि स्वागत।
ओम शांति, ओम शांति। आज मैं अपने बड़े बड़े भाई संत परमात्मा के बच्चे उन सबको देख करके मुझे तो बहुत बहुत हर्ष हो रहा था। बहुत दोनों की आए है, सबकी बहुत खुशी में है। आप सभी का स्वागत है, स्वागत हो, स्वागत हो। अरे पहली बार हर कलप में आए हैं आप, तो पहली बार हर कलप में आए हैं, तो मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। अच्छी बात बस इतना ही ठीक है।
दादी का एक शब्द भी हमारे लिए कोटि कोटि आशीर्वादों से भरपूर है। आप समझ सकते हैं दादी का हमें स्वागत करना चाहिए और दादी ने कितना खुले हृदय से हम सबका स्वागत किया। ऐसे विशाल हृदय की धनी दादी माँ को कोटि 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 हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं ऐसी दादी माँ। दादी आज मेरी ऊपर वाले से थोड़ी सी बात हुई और उससे यूं मुलाकात हुई। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा हमारी सभा में दादी माँ आ रही हैं, कुछ तो बताओ उनके बारे में। बाबा हमारी सभा में दादी माँ आ रही है, कुछ तो बताओ वो कैसी हैं। बाबा ने कहा बच्चे रिश्ता बनाए रखना, बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल मेरी जैसी है। बाबा की प्रतिमूर्ति है, हमने बाबा को नहीं देखा तो क्या हुआ, दादी माँ को देखेंगे तो वही का वही रूप, वही की वही ऊर्जा और वही की वही शक्ति। तो चलिए दादी माँ का जो ये उमंग, जो ये खुशी और ये जोश हम सबको नचा रहा है, तो हम सब भी उस कृष्ण के लोक में चलते हैं और कान्हा के साथ कुछ अपना यूं भाव एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नन्हे बच्चे आ रहे हैं उस कृष्ण की नगरी में ले जाने के लिए। सभी कृष्णमय हो जाएं, राधामय हो जाएं, भूल जाएं कि हम कहाँ हैं।
बहुत खूब जोरदार तालियों के साथ दादी जी का आशीर्वाद ढेरों प्राप्त किया। और ये कन्हैया मथुरा से चलते चलते आबू मधुबन पहुंचते हुए गोरे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी भी आत्मा गोरी हो गई, तो वहाँ काले थे, परंतु अभी पहुंचते पहुंचते श्याम हो गए, श्याम से सुंदर बन गए। तो अभी कार्यक्रम के बहुत अंतिम पायदान पर मैं आदरणीय नारायण भाई जी, जो हमारे यहाँ का लक्ष्य है देवत्व की प्राप्ति अर्थात नारायण पद की प्राप्ति, ऐसे नारायण भाई जी जो धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य हैं, आप इंदौर से आए हैं, ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा उसके पीछे ऑफिशियल वर्क बहुत बखूबी निभा रहे, आपसे हम अनुरोध करते हैं आज की इस अंतिम पायदान पर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपते हैं आभार के लिए नारायण भाई जी।
ओम शांति। जैसे कमल बहन ने बताया कि एक महत्वपूर्ण कार्य आभार प्रदर्शन करना, मैं भी चिंतन कर रहा था इसका आभार नाम क्यों रखा। आभार के अंदर अनेक भार समाये हुए हैं और उन भार को हम चुकतू नहीं कर पाने के कारण एक ही रास्ता नजर आता है, सबका आभार प्रदर्शन करना। तो कितनों का मुझे आभार प्रदर्शन करना है, अगर गिनती करें तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली कड़ी में जो विश्व कल्याणकारी हम सब आत्माओं का पिता, जिसने इतना सुंदर बेहद का ये यज्ञ रचा और इस यज्ञ में धार्मिक प्रभाव को आप सभी संत महात्माओं की सेवा करने के लिए धार्मिक प्रभाव को ये जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने जो धार्मिक प्रभाव के ऊपर भार रखा और उस बार का निर्वाण करने के लिए और इस कार्य को सफलता मूर्त प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमारे आदरणीय जानकी दादी अगर यहाँ फिजिकल रूप में होती तो आज भी हमारी प्रैक्टिकल इस सभा में हमारे सामने होती, लेकिन इस समय वो लंदन में मौजूद होने के कारण यहाँ पहुंच नहीं पाई, लेकिन उनके वाइब्रेशंस, उनके दिल के संकल्प, उनके भाव हमारे तक पहुंच रहे हैं। दूसरा हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी जो स्वास्थ्य के कारण थोड़ा आ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भी शुभकामनाएं हमारे साथ है।
और हमारे इस ब्रह्मा कुमारी के जो महासचिव आदरणीय हमारे ज्येष्ठ प्राता जी निर्वेद भाई जी, जिसका शुभकामना संदेश हमने सुना, और इसके साथ ही जो आज हमारी मनोरमा बहन ने बताई, मैंने भी पहली बार इस कार्यक्रम में हमारी जो आदरणीय दादी यीशु दादी जी ने अपनी इतनी कृपा बरसाई, हम तो बहुत बहुत गदगद हो गए। सारी चार दिन की थकान एक मिनट में हमारी दूर हो गई। इनका हम किस तरह से आभार व्यक्त करें ये मनोरमा बहन ही बता सकती है, क्योंकि मैं तो इसमें असमर्थ हूँ। मैंने पहले ही बताया कि इसमें अनेक तरह के भार है, तो मैं फिजिकल रीति से तो इनका निर्वाण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई रास्ता आप अगर मुझे बताएंगे तो हो सकता है मैं उस रीति से भार का निर्वाण कर सकूं। और साथ में ही हमारी स्टेज के ऊपर जैसे कमल बहन ने बहुत सुंदर मंच का संचालन किया और इनको कवित्री का खिताब प्राप्त हुआ, लेकिन इनके साथ ये कवित्री ऐसी है, ये बोल के कवित्री बनी है, लेकिन जो यीशु दादी को साथ में लाने के लिए कविता बहन, वो अपने कर्मों से कवित्री बनी है। अगर कविता बहन यश नहीं करती तो यीशु दादी आज हमारे सामने नहीं होती, और यीशु दादी नहीं होती तो यीशु दादी जैसे हमारे खजान जी है ट्रेजरर ऑफ ब्रह्मा कुमारी, तो यीशु दादी ने आज वरदानों का चेक सबको बांटा, तो ऐसे यीशु दादी ने अपने वरदानों को चेक इशू किया, तो हम यीशु दादी जी का और साथ में कविता बहन का भी बहुत बहुत धार्मिक प्रभाव आभार प्रकट करता है। और इसके साथ ही आज जो कार्यक्रम समापन कार्यक्रम को सफलता मूर्त प्रदान करने में जो अपनी समय और अपना जो संकल्प अपनी एनर्जी जो दी, स्टेज पर बैठे हुए हमारे रामकृष्ण देव जी, कैलाश रूपानंद जी, अतुल कृष्ण जी, गोरक्षानंद महाराज जी, और साथ में ही ये जो चार दिन का एक कार्यक्रम धार्मिक प्रभाव का इतना सफलता पूर्वक संपन्न हुआ, उसके पीछे हमारी बहुत बहनों का, सबसे पहले गोदावरी दीदी और मनोरमा बहन, और सूक्ष्म में हमारी प्रेम बहन जो आज शारीरिक रीति से यहां नहीं है, लेकिन इन सब के बहुत वरदानी हस्तों से ये कार्यक्रम सफल हुआ, तो इनका भी हम मैं अपनी पर्सनल अपनी रीति से इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और साथ में ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से जो इस कार्यक्रम को सफलता मूर्त प्रदान करने में लगे हुए हैं, तो शांति एक ज्ञान सरोवर के जो ये हमें कैंपस दिया सेवा करने के लिए, तो आदरणीय निर्मला दीदी जी और साथ में ही ज्ञान सरोवर के सभी विभाग के डिपार्टमेंट के सेवादारी भाई बहनों का जो हमें बहुत सहयोग मिला, जिनका हम नाम लेकर के वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, अनेक तरह के डिपार्टमेंट के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ में ही करुणा भाई जी ने जो अपनी करुणा बरसाई, आज इस कार्यक्रम को ये तीन दिन का जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, केवल आप ही नहीं देख रहे हैं लेकिन सारा विश्व इसको देख रहा है, तो इस तरह की आज टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आज सुविधाएं प्रदान की, तो हम मीडिया प्रभाग का भी करुणा भाई जी का भी धार्मिक प्रभाग आभार प्रकट करता है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप नहीं होते तो कार्यक्रम सफल नहीं होता, तो सबसे पहले मैं आप सभी जो मेहमान हैं और उनका मैं आभार प्रकट करता हूं दिल से कि आप सभी ने इतना समय देकर आप पांच दिन का ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार करके आप आए, आपका भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। और इसी आशा के साथ कि पुनः पुनः आप वर्ष में इस तरह के जब कार्यक्रम आयोजित होते रहें तो इस तरह की ज्ञान गंगा का लाभ आप सब लेते रहें, दिलाते रहें, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का दिल से कोटिस कोटिस धन्यवाद। ओम शांति।
और हम सभी भी मिलकर नारायण भाई जी का भी धन्यवाद करते हैं, और आप सभी के लिए भगवान के इस घर से ढेरों साधुवाद के साथ, दादी जी के आशीर्वाद के साथ, बड़ी दीदियों की दुआओं के साथ, परमात्मा का सदा साथ बना रहे उस साथ के साथ, इतना सा कहते हैं आप सबके लिए, पर्टिकुलर आप सबके लिए कि खिले फूलों जैसी लबों पर हंसी हो। फिर ऐसे क्यों बैठे हो, सीरियस सुन रहे हो हंसी की बात और ऐसे बैठे हो, तो फिर कैसी हंसी, खिले फूलों सी लबों पर हंसी हो, ना कोई गम ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का ये सफर, सलामत रहे जिंदगी का ये सफर, जहां आप रहे वहां बस खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। मैं अपने साधु जनों को कहती हूँ, हमारे सब ये घर परिवार में रहने वालों को हाथ उठाकर दादी माँ आशीर्वाद दें, ये सदा खुश रहें, सदा मंगलमय रहें, सब परेशानियां इनकी सदा दूर रहें। मनोरमा दीदी जी से और दादी जी से हम हमारे संत जनों का शॉल के द्वारा स्वामी अतुल जी जो प्रथम दिन नहीं थे उनका सम्मान स्वागत सौगात के तौर पर स्वामी अतुल कृष्ण महाराज जी। लास्ट नहीं कहेंगे बट लिस्ट, सबसे अति महत्वपूर्ण उस जगत नियंता का शुक्रिया, चंद क्षणों के लिए दादी की दृष्टि हम ध्यान के द्वारा, 2 मिनट हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं और दादी जी की दृष्टि प्राप्त करेंगे।
शिवता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा, आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, शिवता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो।